veiled off from human view. But through suffering, death, and sorrow, he has rent the veil in two. Mighty conqueror, since he rent the veil in two. Holy angels stand before him, men of earth give praise, 'tis due. The well-beloved, since he rent the veil in two. Oh, behold this man of sorrows. Oh, behold him in plain view. The mighty conqueror, since he rent the veil in two.
Things are possible.
आइए हम अपने सिरों को झुकाएं।
Lord, on one occasion it was said,
प्रभु एक अवसर पर कहा गया था आपके चेलों के द्वारा हमें प्रार्थना करना सिखा, क्योंकि जब हम स्वर्ग के महान परमेश्वर की दृष्टिकोण को समझने लगते हैं, तो हमें एहसास होता है कि हम कितने अयोग्य हैं। सो हमें प्रार्थना करना सिखा प्रभु, अब हमारे हृदयों में उन चीजों के लिए जो आपके राज्य के लिए और आपके सेवकों के लिए लाभकारी होगा। आप यहाँ हर व्यक्ति की आवश्यकता को जानते हैं, और आज सुबह यहाँ मेज पर रुमाल और वस्त्र और बस कुछ छोटे पार्सल जो शारीरिक सहायता की चीजें और घरेलू चीजें रखी हुई हैं, और जो कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप परमेश्वर हैं और आप ही एकमात्र सच्चे परमेश्वर हैं जो वहाँ पर हैं। और हम आपसे यीशु के नाम में मांगते हैं, जो आपका प्रिय पुत्र है, कि आप इनमें से हर एक को चंगा करेंगे। और यहाँ कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिनके यहाँ रुमाल नहीं रखे हुए हैं या पार्सल, लेकिन चंगाई की आवश्यकता है। वहाँ हो सकता है सारे राष्ट्र भर में, संसार भर में कुछ ऐसे हो सकते हैं, यहाँ तक कि यह टेप उनके घरों या कलीसिया में चलाई जाए। हम प्रार्थना करेंगे प्रभु कि जब सभा चल रही हो, वहाँ या टेप चलाया जा रहा हो, या हो सकता है वे किसी भी स्थिति में हो या किसी भी अवस्था में हो, होने पाए आज सुबह स्वर्ग का महान परमेश्वर हमारे हृदय की सच्चाई का सम्मान करे और जरूरतमंदों को चंगा करे जिसकी उन्हें आवश्यकता है। अब हमें होने वाली सभा में आशीष दीजिए, हमारे जरिए से बात करें जैसे इससे पहले कभी नहीं की हो। परमेश्वर के राज्य के खातिर हम यीशु के नाम में आपके उत्तर के लिए रुके हुए हैं, आमीन। क्या आप इसमें मेरी सहायता करेंगे? आज सुबह फिर से कलीसिया में होना अच्छा है, और मैं अभी कुछ मित्रों से बात कर रहा था जो अभी अभी ओहियो से आए हैं, एक छोटी लड़की के लिए जिसे कुछ महीने पहले यहाँ लाया गया था जो लुकेमिया की बीमारी से मर रही थी। वे लोग बहुत गरीब थे जो उसके माता पिता हैं, और मेरे पास आज सुबह उस गवाही को पढ़ने का समय नहीं है जो कतार पर रखी हुई है, लेकिन तीन दिनों बाद की उस छोटी सी लड़की की तस्वीर है। मैं सोचता हूँ ऐसा था, उसके लिए प्रार्थना की गई थी। डॉक्टरों ने बताया था केवल तीन दिन ही जिएगी, और तीन दिनों के बाद में यहाँ तक उन्हें इसका कोई निशान भी नहीं मिला, और सो वो स्कूल में है, बहुत ही खुश है। मुझे यकीन है कि कलीसिया को याद है जब वो यहाँ कमरे में थी, और वह छोटा बालक जिसका जन्म हुआ था, जैसे उसकी आंतें बाहर की ओर निकली हुई हो, किसी तरह से डॉक्टरों ने और इस छोटे बालक की अवस्था जिस तरह से आंत बाहर निकली हुई थी उसे फिर से वापस नहीं रखा जा सका। वे इस छोटे बालक को छूने से डर रहे थे, यह बस एक नवजात शिशु था, और अब वो छोटा सा बालक जो लगभग एक वर्ष का है, मैं सोचता हूँ ऐसा ही कुछ सामान्य आंत के साथ है जितना ये सामान्य हो सकता है। यह तो केवल परमेश्वर का अनुग्रह है कि वह हमारे लिए कितना भला है। अब मैं आज घोषणा करना चाहता था कि जिस सभा के लिए हम योजना बना रहे थे, मैं इस आने वाले अगले सप्ताह में अफ्रीका में जाने की योजना बना रहा था। वहाँ पर भाई जोसेफ बुआज के साथ, जो केनिया और तंगानिका में है, हम सभा को करने में असमर्थ हैं। भाई बुआज से वापस एक टेलीग्राम प्राप्त हुआ, पिछले हफ्ते हमारे अपने मिशनरियों में से तीन को मार डाला गया और हत्या कर दी गई, और वे अब वहाँ विद्रोह कर रहे हैं, और साम्यवादी वहाँ के मूल निवासी लोगों को बंदूक से मार रहे हैं। वे दावा करते हैं कि उनके पास यहाँ वहाँ आसपास मछली के जहाज हैं, लाल चीन और रूस के, और मूल निवासियों को बंदूकें पहुँचा रहे हैं, और वे यह नहीं जानते कि उनका उपयोग बस किसी भी चीज पर करने से बेहतर है कि जाने किस पर उपयोग करें। तो वहाँ की सरकार ने सोचा कि इस समय पर सभा करना बुद्धिमानी नहीं होगी, और जैसा कि मैं समझता हूँ ऐसा है कि भाई बुआज जो इसी क्षेत्र में है अपने स्कूल को भी नहीं खोल सकते हैं जहाँ पर मैं इस समय पर जा रहा था, लेकिन सभा को रद्द नहीं किया गया है, बस इसे स्थगित कर दिया गया है जब तक कि वे इसे फिर से शांत नहीं कर लेते। आज की सुबह खुशी की बात है, बहुत वर्षों की अनुपस्थिति के बाद हमारे बीच में फिर से दक्षिण अफ्रीका से भाई जैक्सन, भाई सिडनी जैक्सन और बहन जैक्सन को देखकर, क्या उन्होंने बात की, और ये लोग मेरे सच्चे भाई और बहन थे, और दक्षिण अफ्रीका में वहाँ के अभियान में अंतिम दौरे पर वे सह कार्यकर्ता थे, जो हम भरोसा करते हैं कि किसी दिन परमेश्वर के अनुग्रह से फिर से उन लोगों के साथ वापस आना होगा, क्योंकि इसकी आवश्यकता है, और मैं वापस जाने की 9 साल से कोशिश करते आ रहा हूं, लेकिन संगठनों और इत्यादि की वजह से वे मुझे वापस नहीं आने देंगे, इसलिए मैंने हाल ही में उन्हें एक पत्र लिखा और कहा, तब उन खोए हुए प्राणों का लहू तुम पर हो और मुझ पर नहीं, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर कुछ समय के लिए उन लोगों के लिए वहां पर मेरी सेवकाई का उपयोग करना चाहता था, और उनके अलग अलग सांप्रदायिक अंतर होने की वजह से वे मुझे वापस नहीं आने देंगे, लेकिन कोई बात नहीं, प्रभु उस बात को देख लेगा। अब मैं आज सुबह जो कहना चाहता हूं कि यदि प्रभु की इच्छा हुई तो भाई नेविल ने मुझसे भवन पर आज रात की सभा को करने के लिए पूछा है, सो हमने आपको निमंत्रण दिया है, और फिर अगले रविवार को परमेश्वर की इच्छा हुई तो मैं भी यहाँ रहूँगा, तब हो सकता है अगले 2 या 3 रविवारों के लिए अनुपस्थिति होने के कारण ये होने वाली सभाएं रद्द हों, अब हम यह भी कहना चाहेंगे कि मैंने कहा था कि हो सकता है हम इस समय के दौरान सात तुरही को प्रचार करेंगे। हमने सोचा कि अब इमारत के आकार की कमी और वातानुकूलित की असुविधा होने के कारण हम इसे कैसे करेंगे। कमरे में कोई हवा नहीं थी और इसे अभी तक वातानुकूलित नहीं बनाया है, और हमने इस स्कूल को यहाँ किराए पर लेने की कोशिश की जो वातानुकूलित है, जिसमें लगभग इतनी कुर्सियां हैं कि ओह मैं नहीं जानता, इसमें एक बैठने की अच्छी क्षमता है, बहुत ही अच्छा स्कूल है, लेकिन हमें कुछ भी नहीं मिल पाया। और इसे वे हमें अगले सप्ताह को देंगे, लेकिन अगले हफ्ते देखो संसार के विभिन्न भागों के प्रतिनिधित्व आ रहे हैं, जमैका से और उन द्वीपों से और दक्षिण से, यहाँ तक कि दक्षिण अमेरिका और कनाडा और मेक्सिको से और यहाँ वहाँ राष्ट्रों में से। और हमने सोमवार को लिखकर सूचना भेज दी है, तब उन्हें बुधवार या गुरुवार तक नहीं मिलेगा, और फिर समय और इत्यादि के लिए पूछना पड़ेगा जिससे ये इसे आगे डाल दें। आगे आने वाले सप्ताह ये स्कूल के समय तक आपको ये एक रात के लिए मिलता है, और फिर हो सकता है एक या दो रात छोड़ना पड़े और फिर से अगली रात। फिर हम बस ऐसा नहीं कर सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैंने सोचा क्योंकि जब मैंने सच्चाई से प्रार्थना की थी, और तब हमारा फिर से लगभग एरिजोना में वापस लौटने का समय होता है बच्चों को स्कूल में भेजने का, और फिर हम मैं पत्नी से बात कर रहा था, और तो कल मैं कमरे में गया और मैंने कहा प्रभु मैं हो सकता है बहुत सारे शब्दों का उपयोग नहीं करूं, लेकिन कृपया वे समझ जाएं परमेश्वर कि मेरे हृदय में इसका क्या अर्थ है। ऐसा क्या मामला है कि उन तुरहियों को प्रचार करने से सब बातें रोक रही हैं। और तब उसने आकर इसे प्रकट किया, और अब आज सुबह मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि वो कारण क्या है। और अब आइए हम जिसके पास बाइबल है, और इसमें जाना चाहूंगा, बाइबल को खोले, हम पहले लेव व्यवस्था में जाएंगे, लेव व्यवस्था का 23वां अध्याय। यदि प्रभु की इच्छा हुई तो आज रात को मैं इस विषय पर प्रचार करने जा रहा हूँ, छावनी के पार जा रहे हैं, और ये छोटा सा होगा और इसलिए आपके पास समय हो सकता है जिससे आप अपने अपने स्थानों पर काम करने के लिए वापस जा सकते हैं। हम मेहमानों को देखकर खुश हैं जो शहर के बाहर से हैं। कितने यहाँ पर शहर के बाहर से लोग हैं जब हम देख रहे हैं? 95%, जी हाँ 98% सभा के लोग। सो आप देखते हैं कि यह जेफरसन मिल से लोग नहीं है, यह वे लोग हैं जो जेफरसन मिल में आए हैं, जो प्रभु के अनुग्रह से हम यहाँ पर हैं। और अब मैं आज सुबह तीन स्थानों से पढ़ना चाहता हूँ, उनमें से एक लेव व्यवस्था में 23वें अध्याय में पाते हैं, और दूसरा यशाया 18, यशाया 27 में है। आप लोग जो इसे निशान को लगा रहे हैं, और अब प्रचार करने की बजाय प्रभु की इच्छा है तो मैं आज रात ऐसा करूंगा, लेकिन मैं आज सुबह सात तुरहियों के पर्व पर शिक्षा को देना चाहता हूं, जो कि ये महीना सात तुरहियों के पर्व का है आरंभ, और जो कि सातवां महीना है, जो जुलाई का 15 होता है, तुरहियों के पर्व का आरंभ था लेवी के नियमों में। अब और यदि आपके पास आपके कागज और इत्यादि हैं, और वचन और विषयों को लिखने की इच्छा रखते हैं और इत्यादि, जैसा कि हम साथ साथ आगे बढ़ते हैं, इस सभा के लिए एक बात है, ये गर्मी है और हम वर्षों से इसके आदि हो गए हैं, लेकिन शायद कोई तो सोच सकता है कि मैं विश्वास करता हूं कि जब हम इस इमारत में प्रवेश करते हैं तो हम हो सकता है समय को रोक देते हैं, और कुछ हद तक कुछ भाग में अनंत काल के अंदर होते हैं, जिस तरह से मैं लोगों को रोके रखता हूं। मेरा इस तरह से करने का कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन मुझे विश्वास है कि हम यीशु के आगमन के इतने नजदीक हैं कि मुझे हर मिनट का फायदा उठाना है उनके लिए जो मेरे पास एकत्र लोग हैं। और मैं सोच रहा था जब मैं थोड़ी देर पहले सड़क पर गाड़ी चला रहा था कि मैं बाहर थोड़ी देर प्रार्थना करूंगा, बस इससे पहले मैं पुलपिट में जाऊं, जैसा कि कोई भी वास्तविक सच्चा याजकगण करता है। मैं सोच रहा था, आप जानते हैं हमारे पास सबसे महिमा में समय होता है जब हम यहां एक साथ मिलते हैं, लेकिन और कई राज्यों से इकट्ठा हुए लोग होते हैं जो ठीक अभी यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो बहुत दूर दूर से आए हैं, सैकड़ों और सैकड़ों मील दूर से, और हम वचन के इर्द गिर्द संगति करने के लिए एक साथ इकट्ठा होते हैं, लेकिन जल्द ही एक समय आएगा जब ये केवल एक खूबसूरत यादें होंगी। ये सही बात है, ये समय हमसे दूर किया जाएगा, तो इसलिए हमें वो सब करना अवश्य है जिसे हम करने के लिए जानते हैं कि इसे कैसे करना है, ताकि इसे इस तरह से बनाए इसका हर मिनट महत्वपूर्ण है। और अब इस बारे में सोचो, जबकि हम सुबह की गर्मी में परेशानी को सहन कर रहे हैं, और आप जानते हैं कि हर इंसान का एक शरीर खुद एक गर्मी को उत्पन्न करने वाला एक यंत्र होता है, और इससे ये आप पर बहुत ही मुश्किल को पैदा कर देता है। और लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप वचन को पालें। अब बस इससे पहले हम पढ़ें, आइए प्रार्थना करें। प्रभु, या कोई भी व्यक्ति जो अपने हाथों को हिला सकता है, इस बाइबल के पन्नों को पलट सकता है, लेकिन आज सुबह हमारे बीच एक ऐसा है जो इसे खोल सकता है, जो कि महान पवित्र आत्मा है जो हमारे बीच में है। हमारे लिए वचन को खोलें प्रभु, जैसे हम पढ़ते हैं, जैसे आपने चेलों के लिए किया जब वे इमाउस के अपने मार्ग पर जा रहे थे, और आपने उन्हें वचनों को समझाना आरंभ किया। और हो सकता है हम जब हम छोड़कर जाएं, वैसे ही कहें जैसे वे लोग एमाउस से वापस यरूशलेम के लिए आ रहे थे। क्या हमारे हृदय भीतर ही भीतर नहीं जल रहे थे जब वो रास्ते में हमें बात कर रहा था? क्योंकि इसे यीशु के नाम में हम मांगते हैं, आमीन। आइए हम वचन के प्रति आदर के लिए खड़े रहें। अब मेरा आज सुबह का विषय है तुरहियों का पर्व। मैं अब ले व्यवस्था के 23वें अध्याय के 23वें पद से पढ़ना चाहता हूँ। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इसराइलियों से कहे कि 7वें महीने के पहले दिन को तुम्हारे लिए परम विश्राम हो, उसमें स्मरण दिलाने के लिए नरसिंगे फूके जाएं और एक पवित्र सभा इकट्ठी हो। अब यशाया की पुस्तक में से 18वें अध्याय के पहले पद से आरंभ करके इसे एक साथ जोड़ता है। हाय पंखों की फड़फड़ाहट से भरे हुए देश, तू जो कूश की नदियों से परे है, और समुन्दर पर दूतों को नरकट की नाव में बैठाकर जल के मार्ग से यह कह के भेजता है, हे फुर्तीले दूतों, उस जाति के पास जाओ जिसके लोग बलिष्ठ और सुंदर हैं, जो आदि से अब तक डरावने हैं, जो मापने और रौंदने वाला भी है, और जिनका देश नदियों से विभाजित किया हुआ है, हे जगत के सब रहने वालों और पृथ्वी के सब निवासियों, तब झंडा पहाड़ों पर खड़ा किया जाए, उसे देखो, जब नरसिंगा फूका जाए तब सुनो। यशाया में 27:12-13, उस समय यहोवा महानंद से लेकर मिस्र के नाले तक अपने अन्न को फटकेगा, और हे इसराइलियों, तुम एक एक करके इकट्ठे किए जाओगे, और ये उस दिन पर होगा कि वो बड़ा नरसिंगा फूका जाएगा, और जो अश्शूर देश में नाश हो रहे थे और जो मिस्र देश में बरबस बसाए हुए थे, वे यरूशलेम में आकर पवित्र पर्वत पर यहोवा को दंडवत करेंगे। आइए हम फिर से प्रार्थना करें। प्रभु, इन वचनों को हमारे हृदय में आशीष करें। होने पाए हमारे विचारों और हमारा ध्यान तेरे आज्ञा के अनुसार हो, यीशु के नाम में, आमीन। आप बैठ सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जिसे एक पास्टर अपनी सभा के लोगों से कहना चाहता है, जिसे वो पसंद करता है, उन विभिन्न स्थानों के अलग अलग लोगों से, जो कि समय की वजह से हमें अनुमति नहीं देता है। अब जैसे हम इस विषय पर आते हैं, हम चाहते हैं कि आप स्वतंत्रता को महसूस करें, और आप में से बहुत से लोग खड़े हुए हैं, और जब मैं आया हॉल पूरा भरा हुआ था, और दरवाजों के बाहर और सामने और सारी इमारत में और दीवारों के आसपास। सो अब यदि आप एक दूसरे के साथ बैठने के स्थान को बदलना चाहते हैं तो ये अच्छा रहेगा। अब तुरहियों का पर्व, अब यह इज़राइल का इकट्ठा होना था जहां वे एक साथ इकट्ठा एकत्र होते थे, जो तुरहियों का पर्व था। अब मैं कुछ समय के लिए अपेक्षा कर रहा था कि प्रकाशित वाक्य की किताब में से सात तुरहियों के विषय पर बोलूं, और अब हम इस बात की कुछ क्षण के लिए समीक्षा करने जा रहे हैं, ताकि मेरा इस बार इस पर नहीं बोलने का असली कारण सामने आए, क्योंकि पवित्र आत्मा मुझे इस बार इन चीजों पर बोलने नहीं देगा। मैं जानता हूं कि बहुत ही बचपना सा दिखाई देता है, हो सकता है उन लोगों के लिए जो बड़ी शिक्षा और समझ के साथ हैं, लेकिन मसीह लोगों के लिए यह बात अलग ही है। हम आत्मा की अगुवाई का पालन करते हैं, केवल उसी का। अब मैं सात कलीसिया युग के प्रचार पर ध्यान देना आरंभ करूंगा, जो कि प्रतिछाया है या उन सब बातों का पूर्व अनुमान है जो परमेश्वर कलीसियाओं के लिए करने जा रहा था, और कलीसियाओं के जरिए से और उन्हें व्यवस्थित रूप से स्थापित कर रहा था। प्रकाशित वाक्य की किताब के पहले तीन अध्याय वो कलीसिया के निमित्त होने वाली सारी घटनाओं को प्रकट करता है। फिर तीसरे अध्याय से लेकर प्रकाशित वाक्य के 19वें अध्याय तक ये कलीसिया के लिए इसके बाद और नहीं देखा गया। कलीसिया प्रकाशित वाक्य के चौथे अध्याय में ऊपर चली जाती है, और प्रकाशित वाक्य के 19वें अध्याय में वो वापस आते हैं, दूल्हा और दुल्हन एक साथ धरती पर आते हैं, और फिर 19वें अध्याय से 22वें अध्याय के अंत तक यह सब सहशताब्दी पर है, और इसके बाद के वर्षों में क्या होने वाला है। चौथे अध्याय से लेकर 19वें अध्याय के दौरान परमेश्वर इज़राइल के साथ व्यवहार कर रहा है। अब उसके बाद जब हम कलीसिया के प्रकाशित वाक्य की किताब के साथ समाप्त करते हैं, परमेश्वर ने उन सात कलीसियाओं के साथ क्या किया जो उस समय पर उनकी आरंभ की अवस्था में थे या उनकी छाया अल्प एशिया में, तब पवित्र आत्मा ने प्रकट किया और हम पर वहाँ उन सारे रहस्य को खोला, किस तरह से उसने इतिहास में से होते हुए उसकी कलीसिया को लेकर आया है। और यदि आपके पास सात कलीसिया युग की टेप नहीं है तो अच्छा होगा कि आप उन टेपों को सुने, और जल्द ही वे किताब के रूप में होंगे। फिर उस पर छोड़ दिया, और यह समझते हुए कि कुछ समय के बाद हम मोहरों पर प्रचार करेंगे, यह नहीं जानते हुए कि वे मोहरें क्या थी। मेरे पास अपने खुद के विचार थे, जैसे कि हर सेवक के पास होते हैं, उन किताबों को पढ़ते हुए। हो सकता है दूसरे मनुष्य ने इसके लिए क्या कहा था, और जितना मेरे लिए संभव हो सकता है उनके साथ विश्वास करते हुए उन चीजों पर जो बातें उन्होंने बताई थी उनका निष्कर्ष। मैंने श्रीमान स्मिथ, उरिया स्मिथ जो सुसमाचार के शिक्षक हैं, मैंने उनकी किताब पढ़ी थी, और इस पर मैंने उसके विचारों को पढ़ा था, और मैंने श्रीमान लॉन्किन को पढ़ा था, मैंने पढ़ा था, ओह बहुत से अलग अलग लोगों को पढ़ा था, इस पर उनकी टिप्पणियों को पढ़ा, लेकिन किसी ढंग से या भिन्न प्रकार से मैंने सोचा कि मेरा अपना खुद का एक छोटा सा इस पर दृष्टिकोण है, जो शायद ये विभिन्न स्थानों से हो। लेकिन एक बार प्रयास कर रहा था कि तब उन तीन विषयों पर बोलूं, पहला या चार घुड़सवारों के चार विषयों पर बोलूं। मैंने उन विषयों पर चार रात प्रचार किया, एक घोड़े पर एक रात और दूसरे पर। लेकिन तब ऐसा होने से ठीक पहले मुझे एक दर्शन दिया गया जो टेप पर है, जैसा कि आप सब जानते हैं, श्रीमान ये क्या समय है कि मुझे टूसॉन एरिजोना जाना होगा, और वहाँ पीछे रेगिस्तान की तरफ ऊपर पहाड़ में जहाँ मैं कुछ भाइयों के साथ था, और बताया कि क्या ही एक बड़ा विस्फोट होने जा रहा है, और मैं सात दूत नीचे उतर आए। मैं अपने आप में सोच रहा था कि यह मेरे जीवन का अंत था। मैंने अपनी पत्नी से बिल्ली को लाने के लिए कहा, और बताया कि बच्चों के साथ क्या क्या करना है और इत्यादि, जब तक हम दूसरी तरफ फिर से नहीं मिलते। तब एक दिन सबिनो कैनियन में, जब परमेश्वर ने मुझे सुबह सुबह को वहाँ पर बुलाया, मैं वहाँ ऊपर अपने हाथों को हवा में उठाए हुए प्रार्थना कर रहा था, और मेरे हाथों में एक तलवार आ गई। आप ये जानते हैं, मैं वहाँ खड़ा था और तलवार की ओर देखा, बस उतनी ही स्वाभाविक रूप से थी जैसे कि मेरा अभी ये हाथ है ये नहीं जानता था कि इसका क्या मतलब है, और इसने मुझे एक आवाज के साथ छोड़ दिया जिसने कहा यह राजा की तलवार है। और फिर बाद में जब प्रभु के दूत ने इसे प्रकट किया तो यह वो वचन था जो हाथ में था। इसके तुरंत बाद प्रभु के दूत उपस्थित हुए और उसने सात तुरहियों के बारे में बताया, या सात मोहरों के बारे में, जिसे मुझे यहाँ वापस जेफरसन विले में आकर और सात मोहरों को प्रचार करना था। और वहाँ यदि मैंने कभी भी ऐसा कुछ कहा है जो प्रेरणा से था तो यह उसी में था, जहाँ उस प्रभु के दूत ने हमसे मुलाकात की और बाइबल एक नई बाइबल बन गई। वहाँ पर यह खुल गई और सारी चीजों को प्रकट किया जिसे सुधारकों और इत्यादि ने छोड़ दिया था। यह यीशु मसीह का संपूर्ण प्रकाशन है। कुल मिलाकर हमारे लिए नया है, लेकिन सिद्ध रूप से बिल्कुल वचन के अनुसार ही था। वो वचन था जो हमेशा से ही वचन रहा है। मैं बहुत ज्यादा प्रेरणा से भर गया और निर्देशित हुआ था। फिर जब मैं यहाँ पर इस भाग में आया हूँ इस सात तुरही को प्रचार करने के लिए, मैंने सोचा था तो मैं कुछ भी सोचने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं बस उस समय तक रुका रहूंगा और उसे मुझ पर प्रकट करने दो। और फिर कल जब मैं कमरे में गया और सोच रहा था कि, या मुझे आप क्षमा करें, यह परसों का दिन था, जब मैं कमरे में गया ताकि समझने की कोशिश करूं, यह वहां पर था जिसे पवित्र आत्मा ने इसे मुझ पर खोल दिया, मुझे उस कारण को दिखाने के लिए जो इस समय कलीसिया के लिए ये लाभदायक भी नहीं है, क्योंकि इसका कलीसिया से बिल्कुल भी कोई लेना देना नहीं है। अब उन छिपे रहस्यों को पूरी तरह से सात मोहरों में प्रकट किया गया था। इसे पहले प्रकट किया गया है, सात कलीसिया के युग, युगों को खोलकर और उन्हें सही तरह से स्थान में रखा गया, दोनों में इतिहास और बाइबल के साथ, और उन्हें स्थान में स्थापित किया कि वे कैसे थे। और हम खुद को अंतिम युग में पाते हैं, लौदिकिया कलीसिया युग का होना, जो सारे कलीसिया युगों में सबसे अधिक भ्रष्ट युग था, यहाँ तक उस पहले युग से लेकर इफिसियों से, जो एक महान कलीसिया का युग था। और फिर किस तरह से यहाँ पवित्र आत्मा ने मुझे एक दर्शन को दिया, और ये देखते हुए कि क्या बात जगह लेगी, मैंने दो वर्ष पहले ब्लैक बोर्ड पर चित्रित किया था, यहाँ पर ऊपर वो चित्र लगा हुआ है कि कैसे उजियाला धरती पर कम कम होते जा रहा था, जो बिल्कुल ठीक उसी तरह से होगा जो वो उजियाला सुसमाचार के रूप में धरती पर आता है, और यह किस तरह से कम और ज्यादा धुंधला होता रहेगा। उस समय पर इसे नहीं समझ पा रहा था कि इसका क्या अर्थ था और ये कैसे होगा, लेकिन रोम के साथ उस बड़े दुनियावी संसार का एक मिलन हो रहा था, और रोम जो सारे संगठनों की माता है, वो पोप इतिहास में पहली बार वेंटिंगन को छोड़कर और यरूशलेम और बहुत से स्थानों पर गया। अब यरूशलेम हमारे सारे धर्मों के प्राचीन स्थापना है, जो यरूशलेम है, और इस प्राचीन स्थापना में रोम का पोप, जो हर समय कलीसिया का सबसे बड़ा शत्रु रहा है, वहाँ से रोम जाने के लिए निकलता है, मेरा मतलब रोम से फिलिस्तीन यरूशलेम जाने के लिए निकलता है। और जैसा कि हम देखते हैं, मैं खुद अशिक्षित होने की वजह से वचनों को नहीं जानते हुए और उन्हें कैसे बोलना है, मैंने इसे हमेशा ही प्रतिछाया को लेकर सिखाया है, प्रकृति के उदाहरण को लेकर। प्रकृति प्रकृति का अनुसरण करेगी, प्रकृति परमेश्वर की है। जब आप एक समय देखते हैं जब गाय बैल मैदान में, वे सारे एक साथ मैदान के कोने में जमे हुए रहते हैं, अपने मछली के कांटे को पानी में से बाहर निकालें, मछली इसे नहीं पकड़ पाएगी, आप उन गाय बैल को कभी नहीं पकड़ पाएंगे। देखो, गाय बैल विश्राम करते हैं, जब तक आप उनमें से पड़े हुए तब किसी को न छेड़े, लेकिन जब गाय बैल चारा खाने लगते हैं तब देखना, उसी समय पर गाय बैल ऐसा करते हैं, पक्षी भी पेड़ों पर चले जाएंगे, वे खाना छोड़ देंगे। देखो, यह प्रकृति है, यह सब एक साथ मेल खाता है। आप उस समय पर मधुमक्खियों को ध्यान दें, उनके शहद पर भिनभिनाती हैं, ना ही इसे एकत्र करती हैं। सारी प्रकृति एक साथ काम करती है, और इसलिए जैसे हम देखते हैं कि एक पेड़ एक पत्ती को ऊपर लेकर आता है, अब बहुत ही जल्द अगले कुछ ही महीनों में पत्ता पेड़ से टूटने लगेगा, और वो जीवन जीवन का सार नीचे जड़ में चला जाता है, और पेड़ की पत्ती टूटकर और नीचे जमीन पर गिर जाएगी और सड़ जाएगी, और कैल्शियम और पोटाश और ये जो पेड़ के पत्ते में होता है जमीन में गिरकर सड़ जाता है, और क्या हुआ, वो जीवन इसके आगे निकल जाता है और इसे वापस सीधे अपने आप में खींच लेता है और उस पत्ते को फिर से वापस लेकर आएगा। यह एक मृत्यु है, दफन करना और पुनरुत्थान है, और सारी प्रकृति और चांद सूर्य की पत्नी है, उसके पास कम उजियाला होता है। और फिर ऐसा भी है कि जब सूरज चला जाता है तो सूरज की अनुपस्थिति में चंद्रमा पृथ्वी के लिए उजाले को प्रतिबिंब करता है, जो कि एक कलीसिया का नमूना है। और जब पोप चला जाता है, जो कलीसिया का सबसे पुराना शत्रु है, और यरूशलेम की ओर आता है, जो कलीसिया का गढ़ है, जो कि नया यरूशलेम और पुराना यरूशलेम है, हमने देखा ऐसा होने से पहले वहाँ चंद्रमा पूरी तरह से अंधकारमय हो गया था, और अखबारों में सारे राष्ट्र भर में, जैसा कि हमारे पास यहाँ बोर्ड में चित्रित है, इसे सामने प्रदर्शित किया कि कैसे वो चंद्रमा उजाले से अंधकार में बदल गया। और उसी तरह की बड़ी घटना जो उस चांद को बिल्कुल उसी तरह से चित्रित किया गया, यही वो बात है जिसे पवित्र आत्मा ने मुझे 2 वर्ष पहले यहाँ चित्रित करवाया था। और दिखाते हुए ढाकते हुए जब ये 6 चित्र हो गए, तो मैंने वहाँ 7वें को डाल दिया, क्योंकि 7वां कलीसिया काल, जिसमें केवल उजाले का एक हल्का सा प्रतिबिंब था, जो कि यही है जहाँ यीशु दरवाजे पर खटखटा रहा है, लेकिन यह पूरी तरह से अंधकार में चला गया है। और क्या ही प्रतिबिंब है, क्या ही स्वयं परमेश्वर की ओर से संदेश है कि ये बातें सत्य है। इसे पहले उसके वचन में बताया, फिर आत्मा के द्वारा मंच पर, और उसके बाद इसे आकाश में घोषित किया। वहाँ इसमें बिल्कुल ही कोई गलती नहीं है। वे मोहरे और युग पूरी तरह से क्रम में हैं, पूरी तरह से परमेश्वर अलौकिक चिन्हों और चमत्कारों के द्वारा वचन और इतिहास के साथ गवाही को दे रहा है, सभी को एक साथ रखा उस युग में जिसमें हम अब रह रहे हैं। अब ये कलीसिया के लिए इसे देखना मुश्किल है, यह संप्रदायों के लिए इसे देखना मुश्किल है। वे हमेशा ये सोचने की कोशिश करते हैं कि आप लोगों को जोर जोर से चिल्लाकर बाहर निकालने का प्रयास करते हैं। आप ऐसा नहीं करते, आप तो लोगों को चेतावनी देने का प्रयास करते हैं। ये उनका बुरा करने का प्रयास नहीं होगा, आप तो उन्हें बुराई से निकालने की कोशिश करते हैं। यह तो संगठनों में लोग नहीं है, यह तो वो शिक्षा है जिसमें वे रहते हैं, जो उन्हें घात कर रही है। ईमानदार सच्चे लोग, जो कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, यहूदी और जो भी वे हैं, यह मनुष्य जाति है जो नन, वो बुरी स्त्री बनने के लिए नन के मठ में नहीं जाती है, वे अच्छी महिला बनने के लिए वहाँ पर जाती है। वे परमेश्वर के नजदीक आने की कोशिश करती है, लेकिन ये तो वे शिक्षाएं हैं जो उन्हें दूषित कर देती है। लोग कलीसिया से जुड़ते हैं ना ही एक बुरा व्यक्ति बनने के लिए, लेकिन एक अच्छा व्यक्ति बनने के लिए। लेकिन यह तो कलीसिया की शिक्षा है जो उन्हें वचन और उन व्यवस्थाओं से खींच लेती है जिसे परमेश्वर ने इस दिन के लिए रखी है, और यही है जो उन्हें बाहर कर देता है। अब याद रखें, परमेश्वर वचन है, और हर एक युग में उसने वचन को निर्धारित किया है, हर एक युग के लिए जो धरती पर होगा। उसने इसे कलीसिया के युग में निर्धारित किया, और 7 मोहरों ने इसके हर एक अंश को प्रकट किया, समझे? वहाँ क्यों वहाँ रहस्य थे जो अभी भी छिपे हुए थे? प्रकाशित वाक्य 10, हम 7वें दूत के संदेश के अंत में देखते हैं कि ये रहस्य जो छिपे हुए थे वे प्रकट होंगे। प्रकाशित वाक्य 10:1-7, ध्यान दे, इसका कारण यह है क्योंकि इस युग के दौरान कोई भविष्यवक्ता नहीं थे। बाइबल ने कहा कि परमेश्वर कुछ नहीं करता है जब तक वो इसे उसके भविष्यवक्ताओं, उसके सेवकों, भविष्यवक्ताओं को प्रकट नहीं करता है। और सारे युगों में प्रभु का वचन हमेशा भविष्यवक्ताओं के पास आया, ना ही कभी एक सिद्धांत के लिए, ना ही कभी एक झुंड के लिए, ना ही परमेश्वर ने कभी एक झुंड का उपयोग किया। हर समय कोई भी लोगों का झुंड संगठित हुआ तो परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया और वो कभी वापस नहीं आया। इतिहास में ढूंढे और देखें कि यह सही है या नहीं। हम पहले ही इसे बता चुके हैं, ना ही कभी वो एक सिद्धांत या एक झुंड के साथ व्यवहार करता है। उनके संगठित होने के बाद यह परमेश्वर के विरुद्ध होता है। इसलिए सुधारकों के समय के दौरान वे सुधारक आए, क्योंकि सात मोहरों ने प्रकट किया कि ऐसा था। लेकिन अब अंतिम दिनों में इसे फिर से प्रकट किया जाना था, क्योंकि हम वचन में पाते हैं मलाकी चार में कि वहाँ पर अभिषेक को उतर कर आना है और उस मूल विश्वास को फिर से लौटाना है और लोगों के विश्वास को मूल पेंटिकॉस की ओर वापस लौटाने के लिए जो पूर्व पिताओं का विश्वास है। और हमने पहले दौर के एलिया को लिया, हमने उसका अनुकरण करने के लिए एलिशा को लिया, हमने उसके बाद यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को लिया जो उस दिन का एलिशा था, और इस दिन के लिए एक और की प्रतिज्ञा की गई है। अब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ये मलाकी चार का एलिशा नहीं था, यह मलाकी तीन का एलिशा था। यीशु ने ऐसा कहा, देखो मैं अपने आगे अपने संदेशवाहक को भेजता हूँ कि मार्ग को तैयार करे। हम उसे ऐसा करता हुआ पाते हैं। अब ऐसा करने में, उन पद स्थानों को देखने में, हम जानते हैं वे बाकी के सारे वचन परमेश्वर की प्रेरणा से हैं, हम पर प्रकट करता है कि हम अंतिम दिन में हैं। अब यदि मैं पेंटिकॉस के संदेश के साथ आता हूँ तो मैं लौदीकिया युग में रहूंगा और यह सही नहीं होगा। यही वो कारण है कि वेस्ली लूथर के संदेश को नहीं ले सकता है। लूथर एक कलीसिया के युग में था और वेस्ली दूसरे ही कलीसिया के युग में था। यदि यीशु आता है मूसा के संदेश के साथ तो ये काम नहीं करेगा। यदि मूसा नूह के संदेश के साथ आता है तो ये काम नहीं करेगा। लेकिन परमेश्वर ने उसके हर एक युग के लोगों के लिए एक वचन को निर्धारित किया, और इससे पहले वो युग समय के अंदर अस्तित्व में आ सके, फिर उन कलीसियाओं ने इसे इतना मिला जुला दिया कि वे नहीं जानते थे कि वह कौन से समय पर हैं। यही वो कारण है कि वे पहचानने से चूक गए कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। वे उनके रीति रिवाजों ने उनकी आंखों को अंधा कर दिया था, लेकिन ऐसा बिल्कुल वचन के अनुसार ही था। उसी तरह से वे नबी थे। यीशु ने कहा, तुम में जो तुम्हारे पूर्व पिताओं ने क्या उन भविष्यवक्ताओं पर पत्थरवाह नहीं किया जिन्हें तुम्हारे लिए भेजा गया था? तब परमेश्वर अपने भविष्यवक्ता को भेजता है, और भविष्यवक्ता परमेश्वर का जीवित वचन है जो प्रकट हुआ। यीशु ने कहा, तुम मुझे कैसे दोषी ठहरा सकते हो इस बात को कहने के लिए कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, और तुम अपने खुद के नियम में कहते हो। तुमने कहा, जिनके पास प्रभु का वचन आया वे जो भविष्यवक्ता थे, तुमने उन्हें परमेश्वर कहा और वे परमेश्वर हैं, क्योंकि वचन को तोड़ा नहीं जा सकता है। उसने कहा, फिर भला तुम मुझे कैसे दोषी ठहरा सकते हो? जब वे नियम का एक भाग थे, वे परमेश्वर के वचन का भाग थे, लेकिन यीशु परमेश्वर के वचन की संपूर्णता था। उसके संपूर्ण छुटकारे की योजना, परमेश्वर की संपूर्ण योग्यता उसी में थी। और अब कलीसिया युग में से होते हुए उन्होंने ऐसा ही किया है, और सात मोहरों को उन सारे रहस्यों को प्रकट करना है जो उस समय के दौरान छोड़ दिए थे, क्योंकि हम बिना भविष्यवक्ताओं के थे। और वचन सुधारकों के पास नहीं आता है, भविष्यवक्ताओं के पास आता है। परमेश्वर बदलता नहीं है। मलाकी तीन में कहा, मैं परमेश्वर हूँ और मैं बदलता नहीं। परमेश्वर का कुछ भी करने का जो पहला तरीका होता है, हमेशा यही कुछ भी करने का परमेश्वर का तरीका होता है। परमेश्वर ने तय किया कि वह उस एक निर्दोष के बहाए हुए लहू से बचाएगा अदन के बगीचे में, और उसने तब से इसे कभी नहीं बदला है और इसे बदल नहीं सकता है। हमने शिक्षा के द्वारा कोशिश की है, इमारतों के द्वारा, सिद्धांतों के द्वारा, संप्रदायों के द्वारा, नीतियों के द्वारा, और हर एक चीज से, और यह सब विफल रहा है। लेकिन वहाँ केवल एक ही स्थान है जहाँ परमेश्वर मनुष्य से मिलता है, वो है निर्दोष के लहू के नीचे, केवल लहू के द्वारा। यह उसका पहला निर्णय था, समझे? हम एक निर्णय को ले सकते हैं और अगले वर्ष हम बेहतर सोच सकते हैं। हमारे पास अगले वर्ष इससे भी बेहतर विचार हो सकता है। परमेश्वर ऐसा नहीं कर सकता, वह अनंत है। उसका पहला निर्णय एकदम सिद्ध होता है, इसे कोई नहीं हिला सकता है। मैं और अधिक सीख सकता हूँ, हम सीमित हैं। मैं और सीख सकता हूँ, आप और सीख सकते हैं, लेकिन परमेश्वर और नहीं सीख सकता है, वह आरंभ से ही सिद्ध है। और इसलिए जो उसका पहला निर्णय है, उसी पर आपका प्राण विश्राम करता है। बाइबल जो कहती है, बात खत्म हो जाती है। परमेश्वर को किसी दिन संसार का न्याय करना है, और कैथोलिक कहते हैं कि वो कैथोलिक कलीसिया के द्वारा इसका न्याय करेगा। यदि ऐसा है तो कौन सी कैथोलिक कलीसिया? वे तो एक दूसरे से भिन्न है। यदि आप प्रोटेस्टेंट के द्वारा करने जा रहे हैं, कौन सा प्रोटेस्टेंट कलीसिया? वे तो एक दूसरे से भिन्न है और ये थोड़ा पेचीदा हो जाएगा। कोई भी नहीं जानेगा कि कहाँ खड़ा होना है। यदि मेथोडिस्ट सही है तो बैप्टिस्ट नष्ट हो जाएंगे। यदि प्रोटेस्टेंट सही है तो कैथोलिक नष्ट हो जाएंगे। कैथोलिक सही है तो प्रोटेस्टेंट नष्ट होता है। लेकिन बाइबल ने कहा कि वह यीशु मसीह के द्वारा संसार का न्याय करेगा और वो वचन है। तब वो वचन के द्वारा ही इसका न्याय करेगा और सारे संप्रदाय उस वचन से दूर हो गए हैं अपनी अपनी संस्थाओं को बनाने के लिए। मैं अब किसी से भी पूछता हूँ, मुझे ये साबित करे कि वे कहाँ पर पूरे वचन को लेते हैं। वे इसे नहीं कर सकते क्योंकि इसे मनुष्य की एक शिक्षा के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। जहाँ पर आपके पास मनुष्य होता है, परमेश्वर ने कभी भी ऐसा व्यवहार नहीं किया, लेकिन एक समय पर एक ही मनुष्य के साथ व्यवहार करता है। यहाँ तक उसके पास कभी भी एक ही समय पर दो भविष्यवक्ता नहीं थे, एक ही। परमेश्वर अपने हाथ में एक मनुष्य को ले सकता है। वह आपसे व्यवहार नहीं, आपकी संगठन से व्यवहार नहीं करता, वह तो आपके साथ व्यवहार करता है। अब उसी आधार पर हम तुरही के पर्व पर आते हैं, जो छिपे हुए रहस्य है। इसकी भविष्यवाणी की गई, इसे उसी तरह से होना था, इसलिए इसे उसी तरह से प्रकट किया जाना चाहिए जैसा ये था। लेकिन इस अंतिम दिन में प्रकट होने के लिए, उसे बिल्कुल उसी तरह से पूरा होने के लिए जिसे मैंने अभी बताया है, मलाकी उसका चौथा अध्याय, लूका का 17 अध्याय और 30वां पद, वो इसे किस तरह से करेगा, और इब्रानियों 13:8, इब्रानियों 4:12 और उसमें से बहुत से वचन जो हमें बताते हैं। अब यदि यह आप में से कुछ लोगों के लिए अज्ञात है, तो मैं कह सकता हूं कि परमेश्वर हमेशा, जिस तरह लोगों के बीच परमेश्वर को जाना जाता है, वह भविष्यवक्ता के द्वारा होता है। यहूदी हमेशा ही जानते थे अपने भविष्यवक्ताओं पर विश्वास करना है। उसने कहा, यदि तुम्हारे बीच में एक ऐसा होगा तो मैं वो प्रभु आत्मिक सपनों में और दर्शन में उससे बात करूंगा, और वो जो कहता है ये पूरा होता है तो उसकी सुनना। वे हमेशा से ही थे। यही है कि वे यीशु को पहचानने से चूक गए और उसे कुछ तो और समझने लगे थे। सो उन्होंने उसे एक दुष्ट आत्मा बना दिया, बालजबुल, क्योंकि वो उन विचारों को परख सकता था जो उनके हृदय में होते थे। हम हमेशा से ही जानते हैं कि यह एक वचन का चिन्ह है। इब्रानियों का 4:12 पद में कहा, परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार से भी तेज है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। जब वो पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तो वो तुम्हें मेरे द्वारा कही गई इन बातों को याद दिलाएगा और आगे होने वाली बातों को दिखाएगा। परमेश्वर थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से इब्रानियों 1 पूर्वजों से भविष्यवक्ताओं के जरिए से बात की, इस अंतिम दिनों में पुत्र के द्वारा बात की जो यीशु मसीह है। वही परमेश्वर जो भविष्यवक्ताओं से बदलकर पुत्र बन गया, ऐसा ही है, समझे। हमेशा वही संदेश होता है, जिसे करने का वही तरीका होता है। अब यह भविष्यवाणी की गई कि कलीसिया ऐसी स्थिति में होगी, उन्हें फिर से वापस लौटाया जाना था। और उसने मलाकी 4 में कहा कि वह एलिया नबी को भेजेगा और फिर से लोगों के लिए वापस लौटाएगा, साथ ही इसे लाता है। ध्यान देना, और ठीक उसके पहले या उसके संदेश के ठीक बाद एक समय आएगा जब संसार जल जाएगा और धर्मीजन राख पर चलेंगे। अब ये बात कुछ धर्मशास्त्रियों के लिए है जो हो सकता है संसार भर में कहीं तो टेप को सुनेंगे। यदि आप सोचते हैं कि वो यूहन्ना था, तो याद रखें, तब वचन गलत है, क्योंकि यूहन्ना के संदेश के बाद संसार नहीं जला। यीशु लोगों को सहशताब्दी में लेने के लिए नहीं आया, लेकिन उसने इसे करने की प्रतिज्ञा की। ये तो एलिया की आत्मा के फिर से धरती पर आने के बाद ही होगा। ध्यान दें, अब मलाकी 4 में हम यह देखते हैं कि यह लौटाए जाने पर क्या होगा। क्या लोगों का विश्वास वापस मूल पूर्व पिताओं की ओर लौटाए जाना है, उस पेंटिकॉस्टल शिक्षा की ओर जो मूल पूर्व पिता है, और वो लोगों को वापस पिताओं की ओर लौटाएगा? हम लूका 17 में पाते हैं, यीशु ने कहा कि जब वह इस अंतिम दिनों में आता है, लूका 17:33, हम पाते हैं कि यीशु ने कहा, जैसा कि लूत के दिनों में था, वैसा ही यह मनुष्य के पुत्र के आने पर होगा, जब मनुष्य का पुत्र प्रकट होता है। आप ध्यान दें, वह तीन पुत्रों के नाम में आता है। वह दाऊद के पुत्र के नाम पर आता है या मनुष्य का पुत्र, परमेश्वर का पुत्र, दाऊद का पुत्र? आप उसे मनुष्य के पुत्र के नहीं आना था क्योंकि वो एक भविष्यवक्ता था। यहोवा खुद भविष्यवक्ता को मनुष्य के पुत्र कहकर बुलाया और यीशु ने स्वयं को कभी भी परमेश्वर के पुत्र के नहीं संबोधित नहीं किया। उसने हमेशा ही स्वयं को मनुष्य के पुत्र के नहीं संबोधित किया। और ध्यान देना, उसने खुद को बाद में भविष्यवक्ता की नहीं प्रकट किया, वो नबी। कहा, यदि मैं अपने पिता के कामों को नहीं करता तो इसे विश्वास नहीं करना। उसने हर एक कथन को पूरा किया जो उसके बारे में वचन में बोला गया था, यहाँ तक कि उसकी मृत्यु, दफन होना, पुनरुत्थान भी, उसका क्रूस पर चढ़ाया जाना, उसका जन्म, सब कुछ। और उसके कार्य में उसने नबी के कथन को पूरा किया, मनुष्य का पुत्र। अब वो कलीसिया युगों में से होते हुए प्रकट हुआ है। अब देखना, कलीसिया युगों में से होते हुए परमेश्वर के पुत्र की नाई। परमेश्वर एक आत्मा है, पवित्र आत्मा। उसने खुद को कलीसिया के युगों में प्रकट किया, सभा के लोगों में, लोगों के बीच, पवित्र आत्मा के नाई। हम पाते हैं लौतिया कलीसिया युग में, जो अंतिम युग है, उसे कलीसिया से बाहर रखा गया है। कहीं पर भी, किसी भी युग में, कभी भी उसे बाहर नहीं रखा गया है सिवाय लौतिया युग में, क्योंकि उन्होंने कहा, हम धनी हैं और हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, और यह नहीं जानते कि तुम अभागे, कंगाल, नंगे और अंधे हो, और इसे नहीं जानते। उसे कलीसिया के युग में बाहर रखा गया था। और फिर लूका 17 के अनुसार उसने कहा, जैसा कि सदोम के दिनों में था, वैसा ही यह मनुष्य के पुत्र के आने पर होगा। अब वह उसी उत्पत्ति को पढ़ रहा था जो हम पढ़ते हैं। ध्यान दें, सदोम में क्या घटित हुआ? सदोम में ये क्या था? अब्राहम हमेशा ही तीन वर्गों के लोग होते हैं। वहाँ अब्राहम था जो चुना हुआ था, उसे बाहर बुलाया गया था, और खुद सदोम से बाहर। वहाँ लूत था, कलीसिया का सदस्य या वहाँ पर संप्रदाय का व्यक्ति। वह उस संसार का भाग बन गया जो नगर का मेयर होने के नाते फाटक में बैठा हुआ था। वह न्यायी था जो एक मेयर है, और वहाँ अपने आप में सदोम था। अब संध्या के समय या दिन के मध्य में, जब अब्राहम अपने बतूल के पेड़ के नीचे था, तीन दूत उसके सामने उपस्थित हुए। उनमें से दो सदोम में चले गए और सुसमाचार का प्रचार किया और उन्हें बाहर बुलाने का प्रयास किया। उन्होंने ऐसा नहीं किया, वे दूषित हो गए थे। लूत और केवल उसकी पत्नी और उसकी दो बेटियां बाहर निकलने लगे, और उसकी पत्नी नमक के एक खंभे में बदल गई। लेकिन वो एक जो अब्राहम के साथ रुका और उससे बात की, जिसे अब्राहम ने एलोहिम, सर्वशक्तिमान कहा। उत्पत्ति एक, परमेश्वर आदि में परमेश्वर, एलोहिम वो एक सब कुछ देने वाला, एक स्वयं अस्तित्व में रहने वाला। अब्राहम ने उसे एलोहिम कहकर बुलाया, और उसने नीचे बैठकर अब्राहम के साथ भोजन खाया, उसने पिया, वह मनुष्य के देह में था। और उस चिन्ह को देखे जिसे वो अब्राहम को देता है। अब वे एक आने वाले पुत्र के लिए देख रहे थे, एक प्रतिज्ञा किया हुआ पुत्र, इसहाक। 25 वर्ष एक लंबी यात्रा पर उन्होंने इसके लिए देखा था, लेकिन वे यात्रा के अंत में थे। परमेश्वर बहुत से रूपों में दिखाई दिया था, जैसा कि वो कलीसिया युगों में से होते हुए आता है, प्रकाश में और इत्यादि में दिखाई दिया, जैसा कि उसने अब्राहम से बात की और आवाजों के द्वारा। लेकिन आने वाले पुत्र के पहुंचने से पहले, अब हम इन बातों में से होते हुए गए हैं, और आप जानते हैं कि मैं इसे दोहरा रहा हूँ ताकि इसे आपको समझा सकूं, कि उसने तुरंत इसके बाद अब्राहम और सारा के शरीर को बदल दिया, जिससे वे पुत्र को प्राप्त कर सके। ध्यान दें, वो अंतिम चिन्ह जो उन्हें पुत्र के आने से पहले मिला, यहोवा एक मनुष्य की नाई उनसे बात कर रहा था। और उन्होंने कैसे जाना कि यह यहोवा था? क्योंकि उसने कहा अब्राहम, ना कि अब्राम। कुछ ही दिन पहले परमेश्वर ने उसका नाम बदला था। तेरी पत्नी सारा कहाँ है? ना ही SARRA सारा, लेकिन SARAH सारह, राजकुमारी। और अब्राहम ने कहा, वह आपके पीछे तंबू में है। और उसने कहा, मैं, यह एक व्यक्तिगत सर्वनाम है, मैं तुमसे अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार मुलाकात करूंगा। जीवन के समय पर अगले 28 दिन सारा के साथ कुछ तो होने वाला है। और सारा तंबू में अपने आप में मुस्कुराई और अपने हृदय में कहा, यह कैसे हो सकता है, देखते हुए मैं बूढ़ी हो गई हूँ, और क्या मेरे स्वामी अब्राहम से सुख मिलेगा, वह भी बूढ़ा है। और दूत या उस मनुष्य ने कहा, सारा ने अपने हृदय में ऐसा क्यों कहा, जो उसके पीछे तंबू में थी, उसने क्यों कहा कि ये चीजें नहीं हो सकती हैं? देखा, एक मनुष्य शरीर में जैसे एक नबी, फिर भी यह एलन था जो सारा के हृदय में के विचारों को परख रहा था जो उसके पीछे थी। और यीशु ने कहा, जैसा कि ये लूत के दिनों में था, सो ऐसा ही संसार के अंत में होगा, जब मनुष्य का पुत्र, परमेश्वर का पुत्र नहीं, जब मनुष्य का पुत्र प्रकट होगा। यह युग में से होते हुए नहीं हुआ था। क्या वचन की सिद्ध निरंतरता को देख रहे हैं? यहाँ हम इसमें रह रहे हैं, वे रहस्य, यहाँ तक कि प्रभु यीशु के नाम में का बपतिस्मा और एकता की धारणा से दूर, और ये अन्य बातें, कैसे पवित्र आत्मा ने आगे आकर और इसे सिद्ध रूप से दिखाया है, और पवित्र आत्मा का सच्चा बपतिस्मा, वो चिन्ह, टोकन और हरेक चीज को और इसे स्थान में रखा, और कैसे वो हरेक सुधारक को और बिल्कुल सही सही हरेक चीज को रखा, और देखो हमारी अपनी आँखों के ठीक सामने, और यह एक कोने में नहीं है, यह तो सारा संसार जानता है। यीशु परमेश्वर का पुत्र स्वयं को वचनों के जरिए से प्रकट कर रहा है, वचन को स्थापित कर रहा है जो इस दिन के लिए पहले से ठहराया गया है, जैसे यह उस दिन के लिए था और दूसरे दिनों के लिए था जो रहते थे, और इसे विश्वास करना ये पवित्र आत्मा का प्रमाण है। धार्मिकता, आप इसका उच्चारण बस ऐसे ही नहीं कर सकते कि कलीसिया जाना ये पवित्र आत्मा का प्रमाण है। यदि आप करते हैं तो ये बात तो उन फरीसियों के पास थी, समझे? आप इसका उच्चारण ऐसा नहीं कर सकते, हिलना ढुलना या कूदना ऐसे होना, यदि आप करते हैं, मूर्ति पूजक ऐसा करते हैं। यदि आप कहते हैं अन्य जुबान में बोलना, क्या शैतान की आराधना अन्य जुबान में नहीं की जाती है? मुझे एक भी बताएं, भाई जैक्सन अफ्रीका से यहाँ बैठे हुए हैं, जो अफ्रीका से हैं, वे आपको इसे बता सकते हैं। मैं यहाँ भारतीय शिविरों में रहा हूँ, मोह वंश करने वाले, और मैंने जादूगरों को खुद को काटते हुए देखा है, और वे अपने लहू को निकालते हैं और अन्य जुबान में बोलते हैं, और ओझा जादूगर इसका अनुवाद करते हैं, और उन्हें एक पेंसिल रखते हुए और अन्य भाषा में लिखते हुए देखा है, तो ये वो बात नहीं है। लेकिन यदि ये सच्चा प्रमाण क्या है? यीशु ने कहा, यदि तुम विश्वास करते हो कि मैं वो हूँ और वो वचन है। उन्हें ये क्यों नहीं मिला? यहूदियों को ये क्यों नहीं मिला? वे धर्मी मनुष्य थे, वे भले मनुष्य थे, वे पवित्र मनुष्य थे, और सभी तरह के मनुष्य थे, लेकिन वे जिन्हें वचन को सुनने के लिए पहले से ठहराया गया है। और आप कैसे जानेंगे कि यह वचन है या नहीं? हर एक जन यही कहता है, यह बाइबल की प्रतिज्ञा है जो उस युग के लिए प्रमाणित हुई है। आप वहाँ पर हो, आप तब वहीं पर वापस आते हैं जहाँ पवित्र आत्मा है। कुछ ही मिनटों में तुरही की आवाज पर ध्यान देंगे कि यह क्या घोषित करती है। तुरही, सुसमाचार की तुरही, देखो जो इसे सुन सके। याद रखें, वे जो दीवार से घिरे नगरों में थे, वे लोग जुबली में बाहर नहीं आ सके। नहीं श्रीमान, वे दीवारों में थे, वे वहीं पर बने रहे। यह पूरा हुआ था, वे उनके सारे जीवन भर गुलाम रहे और उन्हें छाप लगाई गई थी। अब जैसा कि हम इन सारे नमूनों को देखते हैं, ध्यान दें, अब ये प्रतिक्रिया मलाकी 4 और ये सब और इब्रानियों 13:8, यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। वह हमेशा ही वचन बना रहता है, वचन प्रकट बना। बिल्कुल यही है जो उसने भविष्यवक्ताओं को घोषित किया। एक भविष्यवक्ता का मतलब केवल एक नबी या आगे की बातों को बताने वाला नहीं होता है, इसका मतलब होता है उस लिखित वचन का एक प्रकट करने वाला, उसके खुद के जीवन में से, उसके खुद के कार्यों में प्रकट करता है और उस दिन के वचन को प्रमाणित करता है। जैसे नूह का जहाज को बनाना, वहाँ आगे मूसा और जो भी है, और कोई भी प्रतिज्ञा उस घड़ी के लिए जो प्रतिज्ञा वचन है। अब हम जानते हैं कि वो हमारे साथ है, हम यह विश्वास करते हैं। आप देखते हैं उसका वचन प्रकट बना, तस्वीरों के जरिए से, वचनों के द्वारा, आकाश में घोषणाओं के द्वारा, पृथ्वी पर, बाकी सारी चीजों पर जो उसने कहा था, एक बार भी यह असफल नहीं हुआ। मैं किसी भी व्यक्ति से पूछता हूँ, वो मुझे दिखाए देश के विभिन्न भागों से या संसार भर से, आप बाध्य हैं कि मुझे लिखें और मुझे बताएं जहाँ एक बार यह कभी विफल रहा है। सिद्ध रूप से शब्द दर शब्द अब यही एक प्रतिज्ञा है। उसे अंतिम दिनों में क्यों उपस्थित होना था? यदि आप पीछे जा सकते हैं और आप जो टेप सुनने वाले लोग हैं, दुल्हन वृक्ष टेप को लें और वहाँ पर इसे सुने, जहाँ वो मसीह था, वो पेड़ जो अदन के बगीचे में था, पहला आदम जो गिर गया और यह दूसरा आदम पाप के द्वारा काटा गया। उन्होंने उसे एक रोमन पेड़ पर लटका दिया और उसमें से दुल्हन का पेड़ बाहर आता है, जिसकी उसने प्रतिज्ञा की थी, जो हम वचन में देखते हैं। अब ये दुल्हन को लाने के लिए है, जैसे पिरामिड किस तरह से इसकी हर समय संख्या कम होती जाती है, बड़े चौड़ाई से लूथर, वेस्ली, पेंटिकॉस्ट, और फिर इसके सबसे ऊपर में बहुत ही काटा छाटा गया है और उन पत्थरों में से हर एक को सिद्ध रूप से एक साथ रखा गया है। और हम अभी तक नहीं जानते कि उन्होंने यह कैसे किया, लेकिन इसे सिद्ध रूप से उस पिरामिड में एक साथ रखा गया है। और हम अब पिरामिड की शिक्षा नहीं दे रहे हैं, हम बस हनोक और उन्होंने इसे वर्षों पहले बनाया था और ये एक प्रतीक या चिन्ह के रूप में खड़ा हुआ है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे सूरज उगता है और डूबता है, बस उसी तरह से जैसे एक पेड़ उसके पत्ती को छोड़ता है और वो फिर से वापस आती है, जैसे एक मछली और गाय बैल और बाकी सब कुछ इसका प्रतीक देते हैं, वो पिरामिड एक प्रतीक के रूप में खड़ा हुआ है। नबी के कक्ष में जाएं और उन सात सीढ़ियों को देखें। उस सुरक्षा कर्मी ने कहां पर आह्वान किया ताकि उस आने वाले व्यक्ति को राजा की उपस्थिति में लेकर आए? सीढ़ियों पर सबसे ऊपर ये सातवें सीढ़ी में था। यह वहाँ दर्शाता है कि हम फिर से उसी आत्मा के साथ आने वाले हैं, जो आत्मा यूहन्ना पर था। उसने मसीहा का परिचय करवाया, वह सारे नबियों में से सबसे बड़ा था, उसने इसका परिचय दिया। और हमें फिर से उस स्थान पर आना है, कुछ तो ऐसा जो मसीहा का परिचय करवाने जा रहा है। और मसीहा कैसे? वे लोग जो उस पर विश्वास कर रहे हैं, वे इसे जानते हैं, जब तक वे निरंतर वचन में ना हो, यह जानने के लिए कि वो क्या है। दानियल ने कहा, बुद्धिमान जान जाएंगे, लेकिन मूर्ख ना समझ नहीं जानेंगे, वे अपने परमेश्वर को जानेंगे। अब वो अभी अंतिम दिनों में किस तरह से उपस्थित होगा? लोगों को वचन में वापस लाने के लिए, जिससे कि वो दुल्हन उसके पति को जान जाए, उसके ब्याहता को जानना, जो प्रकट हुआ वचन है। इसलिए ऐसा होना है। यह सुधारकों में नहीं था, लूथर में नहीं था, वेस्ली और पेंटिकॉस्टल और उनमें नहीं था। वचन कहता है कि ये नहीं था, लेकिन ये आएगा। यही इस युग के लिए उसकी प्रतिज्ञा है। हम उस युग में आ रहे हैं जिसमें उसका आगमन हो जाएगा। उसकी उसमें पहचान होना अवश्य है। किसी भी स्त्री का अपने पति के साथ पहचान होना अवश्य है, क्योंकि वे दोनों एक हैं। और मसीह की दुल्हन की उसके साथ पहचान होना अवश्य है, क्योंकि वे दो एक हैं। लेकिन वो वचन है, संप्रदाय नहीं, वचन। हमें उजियाले के संतान होना है और उजियाला वचन है, जिसे इस युग के लिए उजियाला बनाया गया है। हम उजियाले को कैसे जानते हैं सिवाय इसके कि यह वचन से आता है? तो ठीक है, वचन का देहधारी होना ही युग का उजियाला है, जब आप इसे देखते हैं। और बाइबल ऐसे बताता है, वहाँ वे लोग यीशु की ओर देख रहे थे और कहा, तो ठीक है, यह जो मनुष्य है वो कौन है? क्योंकि वो वहाँ एक नाजायज जन्मा है, क्योंकि उसके पिता और माता ऐसे हैं, वैसे हैं और इत्यादि, और वहाँ ये सब है। लेकिन उन्होंने उसे नहीं जाना। यदि वे वचनों को जानते, वे उसे जान जाते। उसने ऐसा कहा, उन्होंने कहा, हम मूसा के चेले हैं। कहा, यदि तुम मूसा को जानते तो तुम मुझे जानते, क्योंकि मूसा ने मेरे बारे में लिखा था। और अब भी इसे देखने के लिए अंधे हैं। देखा, कितना नम्र, सारे समूह से और सारे संप्रदायों और संस्थाओं और हर एक चीज से दूर, परमेश्वर सीधे एक देह के अंदर आ गया, एक मनुष्य के रूप में, एक छुड़ाने वाला निकट कुटुम्बी। उसकी उसके साथ पहचान होना अवश्य है। हमें उजाले की संतान होने के लिए आमंत्रित किया गया है, जिससे हम उजाले में चलें। मुझे वहाँ कैंटकी में याद है, यहाँ ज्यादा समय नहीं हुआ, मेरी एक सभा हुई थी। बाहर मेरी कलीसिया से बाहर आने के बाद वहाँ एक बूढ़ा मनुष्य खड़ा था, उसके हाथ में लालटेन थी। वो एक कलीसिया से संबंध रखता था जो चंगाई और इत्यादि में विश्वास नहीं करती है। कहा, मैं आपसे भिन्न हूँ भाई ब्रैनम। मैंने कहा, ठीक है, आपके पास ऐसा करने का अधिकार है। उसने कहा, आप देखना, मैं कुछ भी स्वीकार नहीं करता जब तक कि मैं इसे देख नहीं लेता। मुझे इसे सीधे स्पष्ट रूप से देखना है। मैंने कहा, क्या तुमने कभी परमेश्वर को देखा है सीधे स्पष्ट रूप से कि वो तुम्हारे सामने खड़ा हो? अवश्य ही वह दर्शन और चीजों में विश्वास नहीं करता था। उसने कहा, नहीं, क्योंकि मैंने कहा, तो आप एक विश्वासी नहीं है श्रीमान, मैं आपसे बात नहीं कर सकता। समझे? देखा, हम वो देखते हैं जो परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है और उसे पकड़े रहते हैं। उसने कहा, आप ये कैसे अंदाजा लगाते हैं? मैंने कहा, उसने कहा, आइए मेरे साथ घर चलिए और आज रात को बात करेंगे। मैंने कहा, मैं नहीं कर सकता इस तरह से। आप कहाँ पर रहते हैं? उसने कहा, आपको यहाँ इस पहाड़ पर जाना पड़ेगा। मैंने कहा, आप वहाँ पर कैसे जाते हैं? आप तो अपने घर को नहीं देख पा रहे हैं। जी हाँ। उसने कहा, ठीक है, वह पहाड़ी के ऊपर जाने के लिए एक रास्ता जाता है। मैंने कहा, आपको रास्ता तो नहीं दिख रहा है? उसने कहा, ठीक है, मेरे पास लालटेन है। मैंने कहा, लालटेन सीधे घर को तो उजाला नहीं दिखाएगा? ओ नहीं, लेकिन ये रास्ता घर तक ले जाएगा। लेकिन वो लालटेन केवल एक समय पर एक कदम के लिए उजाला देगा। हम उजाले में चलेंगे, सुंदर उजाले में, एक समय पर एक कदम, प्रभु उसके नजदीक आते हुए। जी हाँ, उजाले की संतान, उसके वचन को स्वीकार करते हुए चलते रहें और देखो और अधिक खुलता है। इसे मत छोड़ना, कोई फर्क नहीं पड़ता कोई और कुछ भी कहे, उसी में बने रहें और बस ठीक इसके साथ चलते रहें। देखो, ये खुलता जाता है और खुद को प्रकट करता है। वो वचन एक बीज है, एक बीज जो सही प्रकार के जमीन में गिरकर वो अपनी ही जाति के अनुसार लेकर आएगा। ध्यान दें, प्रकाशित वाक्य 10:1-7 तक सारे रहस्य को दुल्हन के लिए प्रकट किया जाना है लौदिकिया कलीसिया के दूत के द्वारा। क्या किसी के पास फिर से छापी गई परिवर्तन बाइबल है? यदि आपके पास है तो आप वहाँ पर ध्यान देना जहाँ यह कहा गया, वो दूत इस शब्द को कोष्टक में वो उकाब कहता है। देखा? देखा, लौदिकिया कलीसिया का संदेश वाहक, देखो प्रकाशित वाक्य 10:1-7। और उसने कहा कि यह उस दिन पर जब उसने उसे नीचे आते देखा और उसने छोटी किताब को खा लिया और वहाँ उसने एक पांव धरती पर रखा और एक समुन्द्र पर और उसने शपथ खाई उसकी जो हमेशा हमेशा के लिए जीवता है और यह कि और समय नहीं रहेगा। और जब उसने ऐसा किया, सात गर्जन ने अपनी आवाजों को दिया और जब सात गर्जन ने अपनी आवाजों को दिया, यूहन्ना ने कहा कि वह लिखने पर था और उसने कहा, इसे मत लिख। देखा, और उसने इसे मोहर बंद कर दिया। अब किसी ने कहा, तो ठीक है, तब वो सात मोहरें भाई ब्रैनम जो अंतिम दिनों में प्रकट होगी, कुछ महान रहस्य कि हम परमेश्वर के नजदीक कैसे पहुंचेंगे? नहीं श्रीमान, ऐसा नहीं हो सकता। जो कोई भी इस बाइबल में से एक शब्द निकालेगा या उसमें से एक शब्द भी जोड़ेगा, उसका भाग जीवन की किताब से ले लिया जाएगा। यह जो बात है, ये प्रकाशन है जो वहाँ पीछे छोड़ते हुए आए हैं ताकि उसे लेकर आए। यह पहले से ही यहाँ लिखा हुआ है, यह यहाँ पर है, इसे प्रकट होना है जो पहले से ही लिखा गया है। समझे? कारण आप इसमें एक चीज भी नहीं जोड़ सकते या इसमें से एक शब्द भी नहीं निकाल सकते। पहला अध्याय बाइबल के पहले अध्याय में, आदि के उत्पत्ति में, एक स्त्री ने इसे अविश्वास नहीं किया, लेकिन उसने बस इसका गलत अनुवाद किया। शैतान को उसने गलत अनुवाद करने दिया, एक शब्द निश्चय ही। देखा, और फिर उसी से यह सारी परेशानी का कारण बना। और यह परमेश्वर बोल रहा था, परमेश्वर का वचन। और प्रकाशित वाक्य के अंतिम अध्याय में यीशु स्वयं उसी परमेश्वर ने कहा, जो कोई भी एक शब्द निकालेगा या उसमें एक शब्द जोड़ेगा, यह यीशु मसीह का संपूर्ण प्रकाशन है। और सात मोहरों के पास छिपे हुए रहस्य थे और यह सब क्या था और इसे अंतिम दिन में खोला जाना चाहिए, लौदिकिया युग में, समय के अंत पर। परमेश्वर का धन्यवाद हो जो कलीसिया के संदेश को समाप्त करता है। ये इसे समाप्त करता है जब वे पीछे मुड़कर देखते हैं और देखते हैं कि ये सब कहां तक लाया गया है, तो ये समाप्त हो जाता है, कलीसिया का युग। अब ध्यान दे कि हम जिस तुरही की बात कर रहे हैं, ये या तो एक पर्व के एकत्र होने की पुकार है या युद्ध के लिए है, किसी व्यक्ति के लिए, किसी पवित्र दिन के लिए या ऐसा ही कुछ। ध्यान दें, आप कहते हैं एक व्यक्ति के लिए, जी हाँ, या जुबली के वर्ष के लिए, स्वतंत्रता के आने की घोषणा, जब वे वापस जा सकते थे। अब हम सारी सुबह केवल इस एक चीज पर बोल सकते हैं, लेकिन अब तुरही को लेते हुए, अब आपके पास मोहरों और कलीसिया की बुनियाद है। अब हम तुरही में जा रहे हैं। तुरही बजती है और तुरही या तो युद्ध को या तो एक पर्व के दिन को घोषित करती है, या इसका मतलब जो है यह एक लोगों को एक साथ एकत्र करना है। तुरही, पौलुस ने कहा, जब एक तुरही की आवाज साफ न हो तो कौन खुद को युद्ध के लिए तैयार कर सकता है, या शांति के लिए, या जो कुछ भी है। कौन जानता है, आपको ये जानना होगा कि तुरही किस आवाज को करती है। इसलिए जब तुरही आवाज को करती है तो हम आज धरती पर कुछ तो देखते हैं। वहाँ कहीं पर तो एक बड़ी परेशानी है, इसे हर कोई जानता है। हर कोई नसों की बीमारी से ग्रस्त हो गया है। सारी दुनिया नसों की बीमारी से ग्रस्त संसार है, और हम जानते हैं कि वहाँ कुछ तो गलत है। उस पेंटागन पंचकोण के चिन्ह को जो हर जगह पर है, हम जानते हैं कि कुछ तो गलत है। अब केवल एक ही तरीका है, आप जान जाएंगे कि तुरही ने क्या आवाज को किया है। यह देखिए कि संगीत की पत्रिका क्या कहती है। बात खत्म। यह एक महान संगीत की रचना है। देखें धुन का क्या बजना है, जैसे पीटर और उल्फ। देखो, जब आप यदि और संगीतकार ने इस किताब को लिखा है, और निर्देशक को भी इसी संगीतकार की आत्मा में होना अवश्य है। यदि वो नहीं देता है तो वो गलत धुन को देता है, और फिर सारी चीज इधर उधर हो जाती है। यही वो बात आज है। हमारे पास आज बहुत सारे निर्देशक हैं जो कि संगीतकार की आत्मा में नहीं हैं। वे कहते हैं संप्रदाय ठीक है, हम इसे विश्वास करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी कहें, बाइबल सही है। इस धुन को इसी के अनुसार बजाएं जो ठीक यहाँ सामने इस संगीत पत्रिका में है। तब परमेश्वर के महान प्रदर्शन की महान संगीत की रचना बिल्कुल सही सही बजने लगती है। तो हम घड़ी को देख सकते हैं और हम कहाँ पर खड़े हैं। अब ध्यान दें, तुरही का आवाज देना लोगों को एक साथ बुलाना है, अपने आप को किसी चीज के लिए तो इकट्ठा करना है। कभी कभी यह एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की घोषणा करना है, जैसे कि यूसुफ। उन्होंने तुरही को बजाया और यूसुफ उपस्थित हो रहा था, जो कि एक महान तुरही का प्रतीक है जिसकी हम बात कर रहे हैं। और कुछ समय के बाद यशाया में जाएंगे, जो कहता है जब बड़ी तुरही फूकी जाती है, जब वो झंडा ऊपर उठाया जाएगा वहाँ ऊपर की ओर, और फिर वहाँ एक समय आएगा जब वो बड़ी तुरही फूकी जाएगी और सारे राष्ट्र यरूशलेम में इकट्ठा होंगे। यही है जब शताब्दी आरंभ होती है, वो महान तुरही। अब ये पुकार, तुरही का पर्व, किसी का तो निकट आना है। ध्यान दें, प्रकाशित वाक्य 8:7, यदि आप लिखना चाहते हैं, हम पहले तुरही में देखते हैं वहाँ धरती पर बिखरे हुए ओले, लहू, अग्नि है। बस बिल्कुल जैसे निर्गमन पर था, जब परमेश्वर अपने लोगों को बाहर बुला रहा था निर्गमन से। अब वो कारण जो ये 7 तुरहियां इस कलीसिया और इस युग पर लागू नहीं होती हैं, क्योंकि यह केवल इज़राइल के लिए है। यह एक पुकार है जो लोगों को इकट्ठा करने के लिए है। और अब यहाँ केवल मेरा एक ही अभिप्राय है कि मैं आपको कुछ ही मिनटों में जो बताना चाहता हूँ, जहाँ आप देखेंगे इस युग पर ये क्यों लागू नहीं होता है जिसमें हम रह रहे हैं, वो 7 तुरहियां। मैं जानता हूँ बहुत से लोग इस बात से भिन्न सोचते हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि यह ऐसा ही है। मैं इसे जानता हूँ इसलिए नहीं कि मैं कह रहा हूँ, आप इसे कह रहे हो क्योंकि मुझे ये खुद से नहीं मिला। मेरे विचार मेरे अपने खुद के नहीं हैं। हमेशा जो भी मैंने इसे बताया है, यदि ये गलत है तो ये गलत है, लेकिन मैं इसे अपने आप से नहीं बता रहा हूँ, मैं किसी और के द्वारा कही गई बात को बता रहा हूँ। और वह कोई और, वो परमेश्वर ही है जिसने हमसे बात की और इन सारी चीजों को किया जिसे उसने किया है और उपस्थित हुआ। देखो, इसलिए मैं जानता हूँ कि यह सही है। वो इज़राइल का इकट्ठा होना तुरहियां है, तुरहियां इज़राइल को एकत्र करना है। ध्यान दे, वही तुरही जो पहले बजी, लहू, आग, ओले और सारी चीजें धरती पर डाली गई। समझे, वो क्या कर रहा था? इज़राइल को आत्मिक मित्र से बाहर ला रहा था, देखो, वापस उसकी मातृभूमि में। अब मैं ठीक यहाँ पर कहूँगा कि हर एक तुरही जो बजाई गई वो छठी मोहर के नीचे बजी। हम इसमें कुछ ही मिनटों में जाएंगे जहां हम उस मोहर को समझेंगे। सारी तुरहियां छठी मोहर के नीचे बजी क्योंकि सातवीं मोहर वहां सन्नाटा था। कोई भी नहीं जानता कि यह वो मिनट था या उस घड़ी में मसीह आएगा जैसे उसने इसे हमें प्रकट किया। लेकिन हर एक तुरही ने छठी मोहर के नीचे फूकी गई, यहूदियों के सतावट के नीचे। याद रखें, प्रकाशित वाक्य अब 8वां और 7वें पद से आरंभ करके सभी को इज़राइल से बाहर बुला रहा था, स्वाभाविक मिस्र में। अब यह आत्मिक अर्थ में इज़राइल के बाहर बुलाना है। वह उन्हें प्रायश्चितता के पर्व में आने के लिए तैयार कर रहा था। ध्यान दें, सबसे पहले तुरहियों का पर्व था जो पेंटिकॉस्ट था। प्रायश्चितता का पर्व इसके बाद आया, 50 दिनों के बाद। प्रायश्चितता का पर्व, इसे यहाँ समझे। हो सकता है यदि हमारे पास समय रहा तो हम इसका उल्लेख करेंगे और इसे आपके लिए बाइबल से निकाल कर पढ़ेंगे, यहाँ लेव व्यवस्था 12 में अब, या लेव व्यवस्था 23 मेरा मतलब, और लेव व्यवस्था 16 में पढ़ेंगे। हम पाते हैं कि पहले तुरहियों का पर्व था जो प्रायश्चितता थी और पेंटिकॉस्ट के बाद आई। अब हम देखते हैं प्रायश्चितता का पर्व तुरही के पर्व के बाद आता है। अब ध्यान दें, एक तुरही को बजाया गया और जो उन्हें एक साथ इकट्ठा करने के लिए थी। अब सबसे पहली तुरही फूकी गई, ओले, लहू, अग्नि धरती पर डाले गए थे, बस बिल्कुल वैसे ही जैसे कि यह मिस्र में था। उन्हें प्रायश्चितता के दिन पर बुलाने के लिए तैयार करता है, समझे। उन्होंने सच्ची प्रायश्चितता को अस्वीकार कर दिया और इन वर्षों को यहाँ से होते हुए बढ़ाया गया है जो पेंटिकॉस्ट का वर्ष रहा है, समझे। अब अगला यहूदियों के लिए बजाया जाना आता है, यह कलीसिया से बाहर बुलाया जाना रहा है। नजदीक से देखें, अब जो कि बाद में वह उन्हें प्रतिज्ञा किए हुए देश में ले गया, जो कि वो उसी बात को करेगा जो कि प्रतिछाया के रूप में है, वह कलीसिया को प्रतिज्ञा किए हुए देश पर ले जाता है। याद रखें, हर एक तुरही छठी मोर के नीचे बजती है, केवल तभी जब ये बजी। अब ध्यान दें, ठीक ठीक वचन का जारी रहना है, बिल्कुल उसी तरह से। सातवीं तुरही के नीचे इज़राइल उसी तरह से है जैसे सातवीं मोहर कलीसिया के लिए थी। हम सातवीं मोहर के नीचे देखते हैं कि जब ये प्राण जो वहाँ वेदी के नीचे थे तो उन्होंने वस्त्र को पाया, उन्हें वस्त्र दिए गए थे, न कि उन्होंने उन्हें हासिल किया था, क्योंकि वे समय काल के पूरा होने के समय में थे जब परमेश्वर तब भी अनुग्रह के साथ अन्य जातियों से व्यवहार कर रहा था, न ही यहूदियों से। इज़राइल एक राष्ट्र के रूप में बचाया गया है, परमेश्वर एक राष्ट्र के रूप में इज़राइल के साथ व्यवहार करता है। अन्य जाति उसके नाम के लिए लोग हैं, न ही उसके नाम के लिए एक राष्ट्र इज़राइल। और जब हिटलर और उन लोगों ने यहूदियों को सताया और उन चीजों को किया जिसे उन्होंने उसके नीचे किया, देखो वे लोग स्टालिन, हिटलर और वे सारे तानाशाह उठ खड़े हुए थे। यदि हमारे पास समय होता था जिससे कि हम कुछ नए लोगों के लिए इसे वापस दोहराते, लेकिन हम इसमें से होते हुए गए हैं। उसी युग के तहत यह जर्मनी में रहा है और सभी अन्य देशों में यहूदी सारे देश भर में बिखर चुके हैं, लेकिन वहाँ पिछले 20 वर्षों में यहूदियों के विरोध में एक कठोर सतावट बढ़ चुकी है। मैं वहाँ उन पुराने स्थानों पर गया हूँ जहाँ उन्होंने उनके शरीर को जलाया था और भस्म कर दिया और उपयोग किया, उनकी राख को जमीन के लिए खाद देने के लिए उपयोग किया गया था, जिसमें यहूदी बच्चे और महिलाओं और हर एक जन थे। बाद में वे इसे इनकार करने की कोशिश करते हैं, उन्हें सीधे वहाँ पर लेकर जाएं और उन्हें दिखाएं जहाँ पर ऐसा किया गया था। यह इज़राइल के विरोध में एक कठोर सतावट रही है, क्योंकि यह अब उसे वापस प्रायश्चितता के लिए बुलाने का समय रहा है। वह अब भी एक स्वाभाविक मेमने की प्रायश्चितता के नीचे है। परमेश्वर का सच्चा मेमना प्रायश्चितता है और उसने इसे अस्वीकार किया है, और तब से लेकर हमेशा से ही लहू उस पर रहा है। ध्यान से, लोगों को तैयार करते हुए, तब किस तरह से सातवीं तुरही और सातवीं मोर सिद्ध हैं, सिद्ध रूप से एक साथ यहूदियों का सताया जाना। ध्यान देना, प्रकाशित वाक्य के 9वें अध्याय और 13वें पद में, अब बहुत ही ध्यान से देखना, छठी तुरही के नीचे। प्रकाशित वाक्य 9:13, छठी तुरही के नीचे, ध्यान दें, 200,000 घुड़सवार थे जो यूफ्रेटिस की नदी में बंधे हुए थे, जो छठी तुरही के नीचे खोल दिए गए थे। अब संसार में 200,000 घुड़सवार नहीं हैं, लेकिन वहाँ 200,000 घुड़सवार थे। इसे ध्यान दें, मैं चाहता हूँ कि आप इसे लिख कर रखें जिससे आप इसे पढ़ सकते हैं। वे स्वाभाविक घोड़े नहीं थे, उन्होंने अग्नि की सांस को लिया और उनके पास यशब का छाती पर पटुका था और उनकी पूंछ थी और पूंछ का छोड़ सर्प की तरह दिखता था, जिसके छोड़ में एक सर्प का सिर था टंक मारता हुआ, समझे। यह आत्मिक घोड़े थे, आत्मिक शैतान, लड़ाई के घोड़े जो इन सारे वर्षों में यूफ्रेटस की नदी में बंधे हुए थे। अलौकिक शैतान, यह क्या था? प्राचीन रोमन साम्राज्य पुनः प्रदर्शित हुआ था, जो यहूदियों का सताया जाना है। वे लगभग 2000 वर्षों से यूफ्रेटस नदी पर बंधे हुए थे। वे प्रतिज्ञा को पार नहीं कर सकते थे। एक धार्मिक मत जो दूसरी ओर जाने की कोशिश कर रहा था, यूफ्रेटस, आप जानते हैं, ये अदन में से होते हुए आती है, लेकिन वे वहाँ बंधे हुए थे। वे 2,57,000 के शैतान, और ध्यान दें कि उस छठी तुरही के नीचे क्या होता है, वे यहूदियों पर छोड़े गए थे, जो यहूदियों का सताया जाना है। अलौकिक शैतान लगभग 2000 वर्षों से, तब स्टालिन हिटलर के द्वारा यहूदियों पर छोड़े गए। आप कहते हैं तो ठीक है, ये रोमन नहीं है, यह वही आत्मा है। उन्होंने उसी काम को किया जिसे उन्होंने पुराने पागान रोमन के दिनों में मसीहों के साथ किया था। अब स्वाभाविक इसराइल और अब आत्मिक कलीसिया को देखें, जैसे हम यहाँ इसे अलग अलग करते हैं। यहूदियों पर खोल दिए गए। आपको याद होगा छठी मोहर के नीचे कैसे परमेश्वर के वचन के अनुसार उन शहीदों में से हर एक को वस्त्र मिलते हैं। यह उन्हें अनुग्रह के द्वारा दिया गया था, क्योंकि वे अंधे हैं, जो वे अपने सुसमाचार को नहीं देख सके थे, जिससे कि यह लोग अन्य जातियों में से दुल्हन होने के लिए बाहर बुलाया जा सके। उन्हें वस्त्र दिए गए थे, बाइबल यहाँ कहती है, उस तुरही के नीचे। वे यहूदी जो पूरी तरह से मसीह और हर एक चीज के विरुद्ध हैं, उनके ऐसा होने का जो कारण था, क्योंकि बाइबल ने कहा कि वे अंधे हैं, और वे आपके कारण अंधे किए गए थे, और न्यायी परमेश्वर जानता है कि वे इसे स्वीकार करेंगे, लेकिन वे आपके कारण अंधे किए गए थे, बाइबल ने ऐसा कहा। वहाँ वो रोमन साम्राज्य है, वहाँ बंधे हुए हैं, किससे? कलीसिया संबंधी शक्तियों से, जो रोम, पागान रोम, जो पापल बन गया है, और वहाँ मसीह लोगों के अपने रीति रिवाजों में बंधा हुआ था। मसीह का कौन सा भाग और रोम का जो अंधविश्वास था, जो इन सभी को एक साथ रख रहा था, स्त्रियों की आराधना और ये सभी अन्य प्रकार की मिलीजुली चीजों को, और क्रिसमस के दिन और छुट्टियाँ और पवित्र दिन और इत्यादि, ये उस रीति रिवाजों के साथ बंधा हुआ है, जो कि इससे निकलने नहीं दे सकता है, क्योंकि यह मसीह सिद्धांतों के विरुद्ध है। अब भी वही अधर्मी पागान की आत्मा है, और वो आत्मा संसार के अंदर के राष्ट्र के अंदर पाई जाती है, जो यजकेल और उनमें से बाकी लोगों की भविष्यवाणियों के अनुसार है, और उन्हें यहूदी पर खोल दिया गया, जो आत्मा के बारे में कुछ नहीं जानते थे। वहाँ पर आपके वो रहस्य हैं, जो उस मोहर के नीचे छिपे हुए हैं। देखा, इसे ध्यान देना, हम इसमें से होकर गए हैं, और मैं यहाँ आपको यह तुरही दिखाऊंगा, यह अंतिम तुरही की क्या बात जगह लेती है। आप वहाँ हैं, ये तुरहियाँ यहूदियों पर छोड़ी गई हैं, क्या आप नहीं देखते? न ही अन्य जातियों पर, वे अन्य जाति जब उन मोहरों को खोला गया था, मोहर किया गया है, समय समाप्त हुआ है, कलीसिया को बुलाया गया है। आपको उस दिन का दर्शन याद है? इसका क्या इसकी झलक याद है? कितने लोग को पिछले से पहले का रविवार याद है? यह कैसे बिल्कुल उसी तरह से वहाँ पर आया था। हमने इसे देखा बिल्कुल वैसे ही, मलिनता को देखा, मलिन चीजें सामने आई, कलीसिया कहा गया, अत्यंत भद्दापन, और वो हर एक राष्ट्र की छोटी सी दुल्हन, उसमें से हर एक अपने राष्ट्र की तरह वस्त्र पहने हुए थी। जहाँ से वो आई थी, वे सिद्ध रूप से प्रभु के सामने चल रही थी। आप ध्यान दें, एक समय आएगा कभी तो, जब वे कहेंगे, तो मैंने सोचा कि सतावट से पहले कलीसिया को जाना था, मैंने सोचा कि एक रैप्चर होना था, यह तो पहले से ही पूरा हो चुका है और आप इसे नहीं जानते। वही है जो उसने एक बार यूहन्ना के बारे में कहा, आप जानते हैं, कहा कैसे, क्यों भविष्यवक्ताओं का कहना है कि वे धर्मशास्त्री एलिया को पहले आना अवश्य है। उसने कहा वह पहले से ही आ चुका है, और यहाँ तक चेले भी यह नहीं जानते, उन्होंने जो कुछ चाहा उसके साथ किया। रैप्चर उसी तरह से होगा। एक घड़ी में उसने ऐसा करने के लिए प्रतिज्ञा की, उसने इस तरह से एलिया को दिखाने के लिए प्रतिज्ञा नहीं की, लेकिन उसने इस तरह दुल्हन उठाने की प्रतिज्ञा की है। एक घड़ी में, जिसे आप सोचेंगे भी नहीं, बस एक बदलना, पल भर में पलक झपकते ही चले जाएंगे, तब आप जो बचे हुए हैं, यही वो समय है। 2000 वर्ष यह आत्मा रोमन लोगों के जरिए से रोमन कलीसिया आगे नहीं बढ़ सकी, लेकिन सबसे पहले वही आत्मा ऊपर आती है वहाँ रोम में, मुसोलिनी में, उन तानाशाह पर। आप उन पांच को जानते हैं, सात चीजें उसने मुझे 33 में दिखाई जो पूरी होंगी, उनमें से पांच पहले ही पूरी हो चुकी हैं। डॉक्टर लीवेल अब वहाँ इस पर एक किताब को लिख रहे हैं, देखा, पांच बातें सिद्ध रूप से और बस दो और बातें घटित होनी है। कहा यह तब आगमन से ठीक पहले हो जाएंगी। अब हम यहाँ ठीक अंत में हैं और ऐसा दिखाई देता है कि छठी बात ठीक आगे बढ़ रही है। देखा, सिद्ध रूप से बिल्कुल वैसे ही, यहाँ तक कि वो युद्ध और वे किस तरह से होंगे, बिल्कुल बिंदु दर बिंदु, और ना ही एक बार भी यह विफल रहा है। सुनना मित्रों, हमें हर समय उन बातों की सूची को बनाना चाहिए। आप नहीं जानते कि हम कहाँ पर खड़े हैं, बहुत ही नजदीक। अब उसने अब छठी मोर के नीचे से इन 2 लाख आत्मिक दुष्ट आत्माओं को छोड़ दिया जो रोम में आरंभ हुए, जर्मनी, हिटलर, और ध्यान देना बाइबल में जहां उन्होंने पाया, कभी नहीं, उन्होंने राजाओं के नाई सामर्थ को पाया, लेकिन ताज नहीं था। एक तानाशाह एक ताज पहनाया हुआ राजा नहीं होता है, बस एक राजा के नाई सामर्थ को प्राप्त करते हैं। ओह, परमेश्वर की आत्मा अभी मुझ में से होकर आगे बढ़ रही है। आप जानते हैं, बस कुछ तो कहते हुए, मैं नहीं जानता कि इसे कैसे कहूँ, नहीं क्या कहना है, और हो सकता है मैं अच्छी तरह से नहीं कह सकूँ। ध्यान दें, 2 लाख शैतान उन यहूदियों पर छोड़े गए, जब उन्होंने उन्हें जला दिया, उन्होंने उन्हें क्रूस पर चढ़ाया, उन्होंने उनके नसों में बुलबुले डाल दिए, उन्होंने उन्हें मार डाला, इतना तक कि उनके पास उन्हें मारने के लिए और अधिक गैस भी नहीं बची थी, और उन्होंने उन्हें गोली मार दी जब तक कि उनके पास गोली से मारने के लिए और गोलियां भी नहीं बची, और उन्होंने वो सब कुछ किया जो वे कर सकते थे, उन्होंने उनके शरीर को और सब कुछ जलाकर खाक कर दिया, और बच्चों को और सभी निर्दोष लोगों को बाड़े पर लटका दिया गया, क्योंकि वे यहूदी थे, उनका इस तरह से हाल किया गया था। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि वह उनमें से हर एक को एक वस्त्र देता है, अयोग्य जैसे कि वे थे, लेकिन उनके अनुग्रह ने उन्हें अंधा कर दिया जिससे कि हम देख सकें। सातवीं मुहर अभी तक नहीं खुली है, आप जानते हैं यही उसका आगमन है, इसलिए जैसे कि वे अभी भी वहाँ उसके नीचे हैं, लेकिन वह हमें पहले से चीजों को यहाँ दिखाता है, जैसे यूहन्ना को दिखाया, उसने उसे ऊपर ले लिया, और एक समय समुन्द्र पर चलना, आप जानते हैं उसने कहा इस मनुष्य के बारे में क्या है जो आपकी छाती की ओर झुका हुआ है, उसने कहा यदि वह मेरे आने तक रुकता है तो इससे तुम्हारा क्या है। देखो, वह कभी नहीं रुका, लेकिन उसने उसे ऊपर उठा लिया और उसे वो दिखाया, वो चीज जो उसके आगमन तक होती है, बस उसे दिखाया, यूहन्ना के लिए पूरी योजना की समीक्षा की। ध्यान दे, अब हम पाते हैं कि स्वाभाविक शक्ति स्वाभाविक के नीचे है, एक स्वाभाविक राष्ट्र के लिए इसराइल वहाँ पर छोड़ी गई थी, और इसने क्या किया, इसने जाकर और युद्ध को छेड़ा और किस तरह से हत्या और सतावट को लाया। अब इसके कलीसिया संबंधित दायरे में मैं आशा करता हूँ कि परमेश्वर अब इसके लिए आपकी आंखें खोलेगा, कारण मैं समझता हूँ कि यह केवल इस कलीसिया के लिए नहीं बोल रहा हूँ, यह टेप विश्व भर में जाती है, और मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है, लेकिन केवल सत्य को बताना है। अब कलीसिया के लिए सांप्रदायिक क्षेत्र को खोला जा चुका है, पुराने पागान रोम की स्वाभाविक बेदारी से जो आगे उन यहूदियों पर चली गई है जो हमेशा से ही उनके शत्रु रहे हैं, वो सिंह जो दांत और सारी चीजों के साथ है, इसने नीचे कुचलकर और लोगों को फाड़ डाला है। रोम हमेशा ही परमेश्वर का शत्रु रहा, और इसे उसी आत्मा में खोल दिया गया संसार के तानाशाहों के द्वारा, क्योंकि धार्मिक व्यवस्था अब भी पकड़ में थी, अब इसे छोड़ा गया है। इसने क्या किया है, धोखेबाजी में, जैसे उसने कहा वो बहकाने वाले की नाई अंदर आता है, और उसने क्या किया है, वो विश्व कलीसिया के प्रोटेस्टेंट विश्वव्यापी परिषद को ला रहा है, उन दोनों पर मसीह विरोधी की आत्मा है जो उन्हें वध करने के लिए ला रहा है, ठीक उसी तरह जैसे उन्होंने दूसरों के साथ किया था दुल्हन को बुलाने के समय में। कैसे कलीसिया की सांप्रदायिक आत्मा में छोड़ा गया, किस पर छोड़ा गया, संप्रदायों पर नहीं, दुल्हन पर, लेकिन यहाँ आप इसे जान जाएंगे, दुल्हन उस समय से होकर नहीं जाएगी। बाइबल नहीं कहती है कलीसिया जाएगी लेकिन दुल्हन नहीं। क्या आप नहीं देख सकते हैं सेवक जन? क्या आप इसे नहीं देख सकते भाइयों? आप कहते हैं कलीसिया को सतावट से होकर जाना होगा उसकी सिद्धता के लिए। यीशु मसीह का लहू दुल्हन को सिद्ध करता है। एक व्यक्ति जो एक दुल्हन को चुनता है वो उसे बहुत सी सजा नहीं देता है। उसने उसके साथ पहले से ही अनुग्रह भी पाया है। उसने उसके साथ अनुग्रह को पाया है। वो उससे सगाई करता है। और यदि ऐसा कुछ भी है तो वह उसे हर स्थान से दूर रखेगा ताकि उसके हाथ को फेर ले। उसका अनुग्रह उन पर बहुत महान है। और ऐसा ही ये दुल्हन पर होगा और ऐसा ही दुल्हन पर है। हम जो अयोग्य सृष्टियां हैं नरक के लायक, लेकिन उसका अनुग्रह इसके जरिए से हमें थाम लेता है। देखो कितने लोग खोए हुए और अंधे हैं। कितने लोग वहाँ संसार में कितने पापी लोग थे जिस घड़ी में मैं बचाया गया। परमेश्वर ने मुझे एक उद्देश्य के लिए बचाया। उसकी इच्छा के द्वारा मैं निश्चित हूँ उस उद्देश्य को करने के लिए। मैं परवाह नहीं करता कि कुछ भी दूसरा क्या होता जाता है। मैं इसे करना चाहता हूँ। और उस घड़ी में जब मैं सारे कलीसिया को देखता हूँ, उनके पास बड़े बड़े तड़क भड़क हैं और धनी और किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। वे कहते हैं और उन्हें देखो अभागे घृणित अंधे फिर आपके पीठ पर थपथपाते हैं। वे चाहते हैं कि आप उनसे समझौता करें। मैंने एक उद्देश्य के लिए जन्म लिया था कि ऐसी ही उस चीज को दोषी ठहराऊं और बाहर बुलाए जाने के लिए मैं इसे करता हूं। याद रखें जब यीशु धरती पर आया तब पृथ्वी पर 100 में से एक भी हिस्से के लोग जानते भी नहीं थे कि वो यहाँ था। वह उस चुने हुए झुंड को लेने के लिए आया। कहा कोई भी मनुष्य मेरे पास नहीं आ सकता है जब तक पिता उसे न खींच लाए। और वे सब जो पिता के पास थे बीता हुआ काल मुझे दिए गए हैं वे ही आएंगे। वे इसे जानेंगे, वे इसे सुनेंगे। इस कलीसिया संबंधित आत्मा के छोड़े जाने की ओर ध्यान करें। अब 20 वर्ष के बाद उस युद्ध के बाद हम कलीसिया संबंधित आत्मा को छोड़ते हुए देखते हैं। किसके नीचे? सातवीं मोहर, यहूदी के लिए सातवीं तुरही। चंद्रमा को अंधकार में होते हुए देखें। किसके नीचे? देखो इसे बाहर निकाला गया है। मनुष्य के पुत्र को कलीसिया से बाहर निकाला जा रहा है। यह क्या है? कलीसिया संबंधित झुंड के साथ जुड़ना और कलीसिया के सदस्य का सम्मेलन और विश्व कलीसिया परिषद के साथ हर एक मनुष्य को खींचते हुए। वो किस बात पर खड़े रहते हैं? क्योंकि आपको अपने सारे सुसमाचारक की शिक्षाओं और चीजों को समर्पण करना होगा। कैसे दो जन एक साथ चल सकते हैं जब तक वे सहमत नहीं हो? वे नहीं हो सकते। यीशु ने कहा कि वे नहीं चल सकते। और कैसे कलीसिया मेथोडिस्ट और बैप्टिस्ट एक साथ चल सकते हैं? कैसे चर्च ऑफ क्राइस्ट प्रेस्बिटेरियन के साथ चल सकते हैं? कैसे कैथोलिक प्रोटेस्टेंट के साथ चल सकते हैं? कैसे प्रोटेस्टेंट प्रोटेस्टेंट के साथ चल सकते हैं? लेकिन दुल्हन वचन के साथ चल सकती है जो मसीह है। ये अवश्य ही समझौते में होना है, न ही कलीसिया संबंधित सिद्धांत लेकिन वचन। आपको वचन के साथ सहमत होना होगा वचन के साथ चलने के लिए। यीशु ने ऐसा कहा, यह इसे सही बनाता है। ध्यान दे, अब वो वहाँ है। वह छूट गई है जो इन सारी छोटी छोटी छोड़ी हुई बातों को बताने के लिए। ओह कोई बात नहीं, इससे किसी भी तरह से कोई फर्क नहीं पड़ता। यही शैतान ने हवा से कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता। यह सब ठीक है, निश्चय ही परमेश्वर एक भला परमेश्वर है। वह हम सबसे प्रेम करता है, वो ऐसा नहीं करता। आपने इसके बारे में बहुत सुना होगा कि वो एक भला परमेश्वर है। वह एक भला परमेश्वर है, लेकिन भला बनने के नाते उसे न्यायी होना है। न्याय के बिना कोई भलाई नहीं है। वहाँ कोई न्याय नहीं है बिना नियम के, बिना सजा के, दंड के। इसलिए हम उसी घड़ी में हैं जिसमें हम रह रहे हैं। ध्यान दें, अब जल्दी से ये अलौकिक दुष्ट आत्माएं अब एक संयुक्त राष्ट्र के आश्रय में पूर्वी और पश्चिमी संयुक्त झुंड एकत्र होते हैं। बिल्कुल जैसे दानियल ने मूर्ति के दाएं और बाएं पैरों को देखा, वे कैसे सहमत नहीं होंगे और एक दूसरे के साथ मिश्रण करेंगे। और वह शब्द इसे होवेर शब्द उस समय के दौरान इनसे होवेर का अर्थ लोहा होता था और खुर्चेव का अर्थ है मिट्टी होता था। और उसने अपने जूते को निकाल लिया और इसे मारा मेज पर जब राष्ट्र संघ या संयुक्त राष्ट्र में खुर्चेव ने किया झाड़ते हुए। ओ प्रभु, जिस घड़ी में हम रह रहे हैं कलीसिया और उसकी परिस्थिति, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, छोटी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। यह ज्यादा देर नहीं है, बस थामे रहो, यह ज्यादा समय नहीं होगा। मैं नहीं जानता कि कितना समय और नहीं जानता कब, कोई भी यह नहीं जानता, लेकिन हम जानते हैं यह वास्तव में अब नजदीक है। कलीसिया की सांप्रदायिकता को देखें, इसे स्वाभाविक में देखें, इसने उन यहूदियों के लिए क्या किया? वे तो कुछ लोग थे जो परमेश्वर के नियमों को पकड़े हुए थे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी ही कलीसिया ऊपर आने लगी, और जो भी है वे मसीह को देखने के लिए अंधे हो गए थे और उस नियमों को पकड़े हुए थे, और परमेश्वर ने उन्हें वस्त्र दिए उनमें से हर एक को, क्योंकि वे शहीद होकर गए। देखा, वे हमारे कारण अंधे हुए थे। अब यहाँ वो कलीसिया है जो बाइबल को छोड़कर कुछ भी नहीं जानती है, बावजूद कलीसिया के सांप्रदायिक सिद्धांतों के, उन संप्रदाय के, वे इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। यह सब उनके लिए पराये हैं। वे उसे जानते हैं और वे केवल उसे ही जानते हैं। लोग आज कुछ हद तक पतरस और उन लोगों की तरह हैं जो ऊपर रूपांतर के पर्वत पर थे। वे पूरी तरह से जोश में आ गए थे जब उन्होंने अलौकिक बात को होते हुए देखा, और एक ने कहा, हम एक कलीसिया भविष्यवक्ताओं के लिए बनाएंगे और एक मूसा के लिए। और इसी तरह से पेंटिकॉस्टल लोगों ने किया, उन्होंने कहा, हम एक असेंबली ऑफ गॉड के लिए बनाएंगे और एक चर्च ऑफ गॉड और एक वननेस और एक टूनेस और इसी तरह से इत्यादि। लेकिन जिस समय वह बोल ही रहा था, तब यहोवा ने पुकार कर कहा, यह मेरा प्रिय पुत्र है जो वचन है, इसकी सुनो। समझे, वो वचन है। वो घड़ी जिसमें हम रह रहे हैं, वो कलीसिया संबंधित आत्माओं का एक साथ एकत्र होना और उन सभी को इस एक बड़े घात करने के लिए ला रहे हैं, मिटा डालने के लिए। यह पहले से ही यहाँ लिखित रूप में है। अब इस राष्ट्र में इन कलीसियाओं को बंद किया जाना है जब तक कि आप संगठन के साथ न हो लें। यह एक संगठन है, यह एक बहिष्कार है, बिल्कुल पशु की शाप की तरह। और अब आप देखते हैं कि पशु क्या है, या आप नहीं देखते? यह एक शक्ति है, और एक शक्ति कलीसिया संबंधित शक्ति। यीशु ने कहा, यह बहुत ही नजदीक होगा जैसे कि वास्तविक हो। यह उन्हीं चुने हुओं को भरमा देता यदि यह संभव होता था तो। लेकिन उसने उस दिन के लिए हमारे लिए यहाँ कुछ ऐसा करने की प्रतिज्ञा की है जिससे हम भरमाई नहीं जाएं, और यह वचन है और मसीह इसे हमारे लिए प्रकट करता है। वे अलौकिक हैं, शैतान आँखों के लिए अनदेखा, लेकिन आप देख सकते हैं कि वे क्या कर रहे हैं। समझे, ध्यान दें, जबकि वह झुंड एक सवारी कर रहा है जो खुद को उन सारी चीजों को कुचलने के लिए तैयार कर रहा है जो उनके साथ सहमत नहीं होंगे, वहाँ जबकि एक और झुंड तैयार हो रहा है, उसके कुछ समय बाद प्रकाशित वाक्य 19। अगली बार जब कलीसिया ने सुना, वो भी आती है, न ही उसी तरह घोड़ों पर, लेकिन बाइबल ने कहा वो एक सफेद घोड़े पर था और स्वर्ग की सेना सफेद घोड़ों पर उसका पीछा कर रही थी। यह सही है, जबकि यहाँ पर नीचे इस झुंड ने यूप्रेस नदी पर 2000 बांधे रखे हैं, और ये 2000 वर्षों से बंधे हुए हैं। ऐसा भी है कि कलीसिया ने लगभग 2000 वर्षों से पवित्र आत्मा को बांध कर रखा है, यातनाओं के नीचे और कलीसिया काल के नीचे। इसे बांधा गया है ना ही यूप्रेस नदी पर, लेकिन संस्था और संप्रदाय के द्वार पर, जिससे कि पवित्र आत्मा कलीसिया में काम नहीं कर सकता है मनुष्य के बनाए सिद्धांतों के कारण। लेकिन वह आजाद होने जा रही है, वह वापस आ रही है, यही है जो बाइबल ने कहा। और वे दोनों युद्ध के मैदानों पर एक दूसरे का सामना करते हैं, फिर से लूसीफर और मिकाएल जैसे आरंभ में था। वे लगभग 2000 वर्षों से बंधे हुए हैं, लगभग 2000 वर्षों से, न ही ठीक 2000, क्योंकि रोमी ऐसे करते ही जा रहे थे। टाइटस 96 AD में और इसी तरह से आगे यहूदियों को मार डाला। वे रोमी, उन यहूदियों को किसने मारा था? टाइटस कौन था? एक रोमन सेनापति। लहू वहाँ फाटकों के बाहर बहने लगा वहाँ, ओह, और उन्हें घात कर दिया, महिलाओं को, बच्चों को और सबको मार डाला। क्या येजकेल 9 ने नहीं कहा कि वे ऐसा करेंगे? उस नगर के बीच में से होकर जाना और वे लोग जो आह भरते हैं, चिल्लाते हैं, उनके माथों पर चिन्ह कर दे वो पवित्र आत्मा, और उनमें से बाकी लोग, वो घात करने वाला आगे आता है, यह बंधे हुए होंगे, उन्हें पकड़े रहो, उन्हें पकड़े रहो, जब तक कि वे आगे आकर और वहाँ मौजूद हर एक चीज को घात नहीं कर लेते। छोटी स्त्रियां, बालक, बच्चे और बाकी के सारे, वे सभी मारे गए थे। ठीक वैसे ही यहाँ फिर से है, अपने आप में दोहराते हुए। और यहाँ यह है जो कलीसिया संबंधित सिद्धांत ठीक वापस आते हुए गला घोटते हुए हर एक चीज को रौनते हुए जो कि परमेश्वर कहलाती है और उनके पास अपने सिद्धांत है और संगठन है और संप्रदाय है लेकिन उनका बाइबल के साथ कुछ लेना देना नहीं है। वे आपको जल्दी से बोल देंगे कि वे इसमें विश्वास नहीं करते। जी हाँ श्रीमान, वो ही कहें जो कलीसिया कहती है। यह तो ऐसा है कि परमेश्वर क्या कहता है, वो वचन है। दुल्हन वचनों के साथ है, वे एक हैं। वे कैसे एक हो सकते हैं? जब वो वचन जो उसमें लिखा गया है आप में बनते जाता है और आपको और वचन को एक बनाता है। यह बिल्कुल वही है जो उसने प्रतिज्ञा की थी। तब ये अनुवाद है, परमेश्वर को अनुवाद की आवश्यकता नहीं है। वे कहते हैं तो ठीक है, हम इसे इस तरह से अनुवाद करते हैं। आपके पास कुछ भी अनुवाद करने का कोई अधिकार नहीं है, परमेश्वर अपना अनुवाद स्वयं करता है। परमेश्वर ने कहा उजाला होने दो और वहाँ उजाला था। कौन इसका अनुवाद करता है? उसने कहा एक कुंवारी गर्भवती होगी और वो गर्भवती हुई, जिसे किसी अनुवादक की आवश्यकता नहीं है। इसका अनुवाद पहले ही किया जा चुका है। परमेश्वर ने कहा कि ये चीजें इस दिन में घटित होगी और ये चीजें हैं। इसे किसी अनुवादक की आवश्यकता नहीं है, यह अपना अनुवाद खुद करता है। ओ प्रभु, प्रकाशित वाक्य 9:1 पांचवी तुरही के नीचे उनके राजा, ध्यान दें, प्रकाशित वाक्य 9:1, अब 2,00,000 घोड़ों के इस बड़े झुंड के राजा, उनका उनके ऊपर एक राजा था। और यदि हम ध्यान दें तो यह एक गिरा हुआ तारा था। स्वर्ग से तू क्यों गिर गया हे लूसीफर? ओह, किस तरह से डॉक्टर स्मिथ की वहाँ बहुत ही शंका में आ गया था, लेकिन कोई बात नहीं, देखो ये उसके समय के लिए नहीं था। देखा तो ठीक है, अथाह कुंड थे उनका राजा, अथाह कुंड का राजा था। प्रकाशित वाक्य 17:8, मैंने यहाँ कुछ लिख कर रखा है, मैं बस इसे पढ़ने जा रहा हूँ, आप यहाँ देखें। प्रकाशित वाक्य 17:8, मैं यह देखना चाहता हूँ कि यह यहाँ पर क्या कह रहा है, क्योंकि मैं अब नहीं जानता कि इस अगले में 17:8 किस तरह से है। और जो पशु तूने देखा है यह पहले तो था पर अब नहीं है, और अथाह कुंड से निकल कर विनाश में पड़ेगा, और पृथ्वी के रहने वाले जिनके नाम जगत की उत्पत्ति के समय से जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, इस पशु की यह दशा देखकर कि पहले था और अब नहीं और फिर आ जाएगा, अचंभा करेंगे। देखो था, एक पोप मरता है, दूसरा एक ऊपर आता है। पशु जो था, जो नहीं है, जो है, जो नहीं है, जो है, इसके क्रम को ना बदलें। यह पोप है, उसी समय पर हर एक चीज उसी व्यवस्था में जाना है। और यह कहाँ पर आएगा? अथाह कुंड के लिए। और बाइबल ने यहाँ कहा कि इन लोगों का अगुवा अथाह कुंड से था और वह उनका राजा था, और वह एक तिगुने मुकुट के साथ बैठा हुआ था और उसके साथ प्रोटेस्टेंट को जोड़ता है। एक लूथरन याजक को एक दिन कहते हुए कहा, या एक लूथरन प्रचारक ने कहा, ठीक है, लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं क्यों एक कॉलर को पहनता हूँ, वे भला मुझसे कैसे कह सकते हैं? क्या आप वहाँ पर थे? हाँ। और यह क्या वो हास्यास्पद नहीं था? मुझे लगभग उल्टी जैसा महसूस हुआ, मंच पर से चला गया। उन्होंने कहा क्योंकि उन्हें कुछ अलग नहीं होना चाहिए। यदि लूथर, मार्टिन लूथर इसे सुनता तो वह उसकी कब्र में मुड़कर कहता, तुम पाखंडी लोगों, तुम मेरे दर्जे के नहीं हो। देखा, लेकिन आप जानते हैं कि यह कहाँ से आया है? कहते हैं कोई भी अंतर नहीं है, वहाँ एक अंतर है, यहाँ तक कि व्यक्तिगत में भी भिन्नता है। परमेश्वर ने कहा मुझे अलग करो, और पौलुस और बरनबास यह सही है काम करने के लिए, अलग हो जाओ। परमेश्वर एक अलग करने वाला है, ना ही मिश्रित करने वाला। एक मिश्रित कलीसिया आज एक अच्छा मिश्रित करने वाला चाहती है, जो उन्हें स्नान करने के अर्ध नग्न वस्त्र पहनने दे सकता है और छोटे कपड़े, और वो सब कुछ पहनने दे सकता है और बाहर निकलकर और इसी तरह से बातों को जारी रखें। लेकिन परमेश्वर ने कहा मुझे अलग करो, खुद को संसार से अलग करो। प्रकाशित वाक्य हम यहाँ पर देखते हैं कि उनका राजा अथाह कुंड से था, और यह वही एक है जो विनाश के अंदर चला गया, अंदर और बाहर बाहर चला जाता है। ध्यान दें, ले व्यवस्था के 23वें अध्याय में वचन के साथ क्रम में होने के लिए कितना सिद्ध अनुवाद है उसके साथ, जो हम अब बताने का प्रयास कर रहे हैं। अब इस क्रम को देखना, अब हम ध्यान दें, आइए अब खोल कर और इसे कुछ समय के लिए पढ़ें। सबोपदेशक में, लेकिन ले व्यवस्था में, ले व्यवस्था 23, अब यहाँ इस पर ध्यान दें, ले व्यवस्था अब 23वां अध्याय है, और हम चाहते हैं कि हम इसे बिल्कुल ही न चूकें, जिससे कि हम इसे ठीक उसी तरह समझ सकते हैं जिस तरह से प्रभु ने इसे हमारे लिए यहाँ लिखा है। मैं निश्चय ही निर्गमन में लेव व्यवस्था को नहीं पा सकता हूँ। क्या मैं पा सकता हूँ? तो ठीक है, अब लेव व्यवस्था। और प्रभु 23वां में फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इसराइलियों से कह कि यहोवा के पर्व जिनका तुम पवित्र सभा एकत्रित करने के लिए नियम समय पर प्रचार करना होगा, मेरे वे पर्व ये हैं। देखा, उस दिन तुम परिश्रम का कोई काम न करना और यहोवा के लिए एक अग्नि भेंट चढ़ाना अब देखना, अब ध्यान देना। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, उसी सातवें महीने का दसवां दिन प्राश्चित का दिन माना जाए। देखें, प्राश्चितता बाद में आती है। अब देखना, प्राश्चितता तुरही की आवाज के बाद आती है। देखा, कितना सुंदर है। देखा, प्राश्चितता का दिन तुरही के पीछे पीछे आया। अब हमारे लिए तुरही के 50 दिन प्रतीक हैं, जब तुरही पेंटिकॉस्ट में बजती है, जो 50 दिनों का था। अब इसके बाद यहूदियों ने अस्वीकार कर दिया। अब तुरही उन्हें उस प्राश्चितता पर वापस बुलाने के लिए है। देखो, उन्होंने जिस प्राश्चितता को अस्वीकार किया था और उन्होंने अस्वीकार कर दिया ताकि हमारी आंखें खोली जा सके। उनकी आंखें बंद थी और इस समय के दौरान ये मोरे खुल गईं और वो तुरहियां फूकी गईं। और अब तुरहियों का फूका जाना ठीक मसीहा के आगमन से पहले, क्योंकि उन्हें फिलिस्तीन में होना है। और आपको याद होगा कि परमेश्वर ने फिरौन के हृदय को कठोर किया था उन्हें मिस्र से बाहर निकालने के लिए, और उसने स्टालिन, मुसोलिनी और उस सब को कठोर कर दिया, जिससे कि उन्हें प्रतिज्ञा किए हुए देश में वापस लेकर आए, जहां 144,000 को होना चाहिए। और अब पहली बार हजारों वर्ष में 2500 वर्ष की इजराइल एक उसके अपने झंडे के साथ राष्ट्र है, उसकी अपनी सेना और सभी चीज के साथ है, और इसे संयुक्त राष्ट्र में माना गया है। पहली बार ऐसा हुआ है, सबसे पुराना झंडा जो कभी धरती पर लहराता था इस समय फिर से लहरा रहा है, वो 5 दाऊद का 6 कोनों वाला तारा। उसने कहा कि वह अंतिम दिनों में झंडे को ऊपर उठाता है, जब वह वापस आ रही होगी। हम अंत में हैं, इसके बारे में अब कोई संदेह नहीं है, हम यहाँ पर हैं। अब ध्यान दें जल्दी से प्रकाशित वाक्य 9, सातवीं तुरही के नीचे, उनका राजा अथा कुंड से है। तब लेव व्यवस्था में अब वचन के साथ यह कितना सही अनुवाद है, क्योंकि देखें, तुरंत बाद ही पेंटेकोस्टल जुबली प्राश्चितता के दिन के पीछे आता है, पर्व के समय को लाने का जो क्रम है। पेंटेकोस्टल पर्व प्राश्चितता को करना, उसके बीच में प्राश्चितता के लिए तुरही को फूका जाना पेंटेकोस्टल पर्व था, जो समय की लंबी अवधि थी। देखो, वहाँ एक समय की लंबी अवधि थी पेंटिकॉस्टल पर्व, तुरही के फूकने के बीच, तुरही का फूका जाना समय की लंबी अवधि थी। स्पष्ट रूप से यह 50 दिन थे पेंटिकॉस्ट के पर्व से लेकर प्राश्चितता के पर्व तक, 50 दिन थे। अब 50 दिन ठीक 7 सबत के दिन है, और वे 7 सबत, वे 7 कलीसिया के वर्ष, कलीसिया के युग हैं। इसे समझा? देखा, समझे? अब यहूदियों को अंधा कर दिया गया है, इस सारे समय प्रतीक्षा कर रहे हैं, जबकि पेंटिकॉस्टल का पहला फल कलीसिया पर उन्हेल दिया गया है। और हम शहीदों के युगों में से होते हुए नीचे आए हैं, और सुधारकों के युग के युगों में से होते हुए, और अब बाहर बुलाने के युग में है। 3 खंड एक ही आत्मा, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की तरह एक ही हैं। देखा, लेकिन 7 कलीसिया काल, जो कि 7 सबत होते हैं, बिल्कुल ठीक पेंटिकॉस्टल जुबली की तुरही, पेंटिकॉस्टल जुबली के पर्व से लेकर 7 सबत के दिन तक, तब तक पुले का हिलाया जाना और फिर पेंटिकॉस्टल जुबली, और फिर जुबली से लेकर प्राश्चितता 7 सबत है, 50 दिन है, और 50वें दिन के अंत पर प्राश्चितता को किया जाता है। आपने इसे समझा? अब और यह एक प्रतिछाया रही है, जो कलीसिया जब उसने खुद को प्रकट किया था, परमेश्वर के पुत्र की नाई जो कलीसिया के लिए प्रकट हो रहा था पवित्र आत्मा के बपतिस्मे में, वहाँ उन युगों में से होते हुए पेंटिकॉस्टल युग में, देखो बस और अधिक आगे बढ़ रहा था। लूथर के नीचे धर्मीकरण, वेस्ली के नीचे पवित्रीकरण, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। अब यहाँ बाहर बुलाने का समय है। छठी मोहर पर जब यह खोली गई, यहूदियों पर सतावट आ गई, शब्द दर शब्द उसी दृष्टिकोण में। और यहाँ कलीसिया के लिए सतावट आती है कलीसिया की सांप्रदायिक दृष्टिकोण में, क्योंकि दुल्हन को पहले से ही बुलाया गया है। सबद समाप्त हो गए हैं और तैयार हैं यहूदियों को बुलाए जाने के लिए। कहाँ के लिए? प्राश्चित्ता के पर्व पर। ओ कलीसिया, क्या आप इसे नहीं देख रहे हैं? प्राश्चित्ता के पर्व के लिए बुलाया गया है। क्या? ताकि प्राश्चित्ता को पहचान ले। अब और मुर्गियों और कलहंस के लिए नहीं, और वे जो करते आ रहे थे। परमेश्वर का मेमना दुनिया की नींव डालने से पहले घात किया गया। इसराइल इस बात को जान लेगा। ध्यान दें, यहाँ एक बड़ी चीज है। देखो, ओ प्रभु, पवित्र आत्मा को संप्रदायों के द्वारा बांधा गया है। इन सारे 2000 वर्षों से लेकर हम देखते हैं ऐसा ही है। अब ध्यान दें, सबत, सात सबत, वे वहाँ पूरी तरह से बाहर नहीं निकल सके। बाइबल ने कहा, एक ऐसा दिन होगा, ना ही रात होगी और ना ही दिन होगा। और सारे वचन यीशु ने कहा पूरे होने ही हैं। क्या यह सही है? कहें आमीन। भविष्यवक्ता ने कहा एक दिन आएगा जिसे दिन या रात नहीं कहा जा सकता है, लेकिन संध्या के समय में यह उजियाला होगा। यह क्या था? वही सूरज जो पूरब में चमकता है, ये वही सूरज है जो पश्चिम में चमकता है। हर समय जब सूरज निकलता है और उस ओर जाकर और डूबता है, इसका अर्थ आपका जीवन है। छोटा बच्चा जन्म लेता है, कमजोर होता है सुबह को, लगभग 8 बजे यह स्कूल जाता है, 11:30 बजे यह स्कूल से बाहर आता है, यह दिन की गर्मी होती है, तब यह डूबने लगता है। 50 वर्ष, 60, 70, 80, 90 वो उस ओर डूबने लगता है और मर जाता है, केवल अगले दिन वापस आने के लिए। और ये कहते हैं वहाँ जीवन, मृत्यु, दफन होना, पुनरुत्थान है। और ध्यान दें, रोजाना जीवन सूरज के साथ ढल जाता है। हमारे पास सबसे पुराना रोजाना का जीवन चीन का है, हर कोई ये जानता है। पवित्र आत्मा कहाँ पर उतरा? पूर्वी देश पर, पूर्वी लोगों पर। और सुसमाचार ने सूर्य के साथ यात्रा की है। यह कहाँ से आता है? वहाँ पूर्व में से जर्मनी में, जर्मनी से इंग्लैंड की ओर खाड़ी को 3 बार पार किया, भूमध्य सागरीय से जर्मनी में, जर्मनी से भूमध्य सागरीय, पूर्व से जर्मनी में, भूमध्य सागरीय में से होते हुए जर्मनी से इंग्लैंड खाड़ी के ऊपर इंग्लैंड में, इंग्लिश खाड़ी से प्रशांत महासागर के ऊपर से होते हुए या अटलांटिक महासागर, वहाँ से संयुक्त राज्य में। और अब वो पूर्वी तट में है। उसने उस राष्ट्र को पार कर लिया है जिसे उसने रोजाना का जीवन जी लिया और पार किया और आगे चलता गया। रोजाना के जीवन ने यात्रा की, सुसमाचार ने इसके साथ यात्रा की है। अब सारा कूड़ा करकट पश्चिम तट पर है, जहां सब कुछ उठा लिया गया है जैसे ज्वार की लहरें अंदर आने लगती हैं। लेकिन भविष्यवक्ता ने कहा पुत्र इस दिन में से होते हुए नहीं चमकेगा, यह एक धुंधला दिन होगा। उनके पास पर्याप्त उजियाला था जैसे एक वास्तविक बारिश का दिन होता है। वे कलीसियाओं से जुड़ सकते थे और प्रभु पर विश्वास कर सकते थे और इस तरह की बातें। लेकिन उसने कहा संध्या के समय में बादल चले जाएंगे, संप्रदाय लुप्त होते जाएंगे। और वही सुसमाचार, वही वचन देहधारी हुआ जैसा कि उसने लूका 17:33 में प्रतिज्ञा की थी। वही सुसमाचार उसी चीज के साथ संध्या के समय जगह को लेगा, बस जब छाया कम होती जा रही होगी। वही सुसमाचार, वही मसीह जो पूर्वी लोगों पर उस वक्त आरंभ में वहाँ बहुत पहले के समय में रहा था, अंत के समय में वो फिर से पश्चिमी लोगों में रहेगा। यह संध्या के समय में उजियाला होगा। सारे वचन प्रेरणा के द्वारा दिए गए हैं और इसे तोड़ा नहीं जा सकता। वे बड़े 50 दिन बीत चुके हैं, वो पेंटिकॉस्टल का पर्व बीत चुका है, 7 सबत तुरहियों तक जो 7वें कलीसिया युग की एक प्रतिछाया है। याद रखें, छठी तुरी के नीचे यहूदी, क्या आप सुन रहे हैं? छठी तुरही के नीचे पेंटिकॉस्टल्स बाइबल को अस्वीकार करते हैं। वो गुनगुने न ही केवल पेंटिकॉस्टल्स, बाकी के सारे कलीसिया का संसार मसीह को अस्वीकार करता है और उसे बाहर की ओर रखा है। और उसी तुरही में और उसी मुहर में मेरा मतलब जब ये खुला हुआ था दिखाने के लिए कि यीशु कलीसिया से बाहर है, वापस अंदर आने की कोशिश कर रहा है, उसी समय पर यहूदियों के लिए तुरही बजती है और यहूदी प्रायश्चितता को पहचान जाते हैं। महिमा, हालेलुया, ओ प्रभु। पवित्र आत्मा को इन संप्रदाय की नदियों के द्वारा बांधा गया है लगभग 2000 वर्षों से, लेकिन इसे संध्या के समय में आजाद किया जाना है, संध्या के समय के संदेश के द्वारा। पवित्र आत्मा फिर से वापस कलीसिया में है। मसीह स्वयं मनुष्य के देह में प्रकट हुआ संध्या के समय में। उसने कहा, उसने इसकी प्रतिज्ञा की। इसके तीन चरण थे, जैसा कि मैंने कहा, वे शहीद के युग में इसके लिए, और फिर सुधारकों का चरण, और अब बाहर बुलाने का समय। जब समाप्त हुआ लौदिकिया के युग पर प्रकाशित वाक्य 10 के अनुसार बाइबल के सारे रहस्य दुल्हन जान जाएगी। यह सही है, प्रकाशित वाक्य 10। अब ध्यान से सुनना, दुल्हन को वचन के द्वारा बाहर बुलाया गया। मसीह खुद दुल्हन को बाहर बुला रहा है। इब्रानियों 13:8 को स्पष्ट बना रहा है कि वो कल, आज और युगानुयुग एक सा है। वह जो मुझ पर विश्वास करता है, जो काम मैं करता हूँ वो भी करेगा, समझे। लूका 22 या लूका 17:30 और मलाकी 4 भी, इब्रानियों 4:12, इन सारे वचनों में जो प्रतिज्ञा की गई, यह छठे और सातवें मोहर के बीच होना है, और छठी और सातवीं तुरही, पेंटिकॉस्ट पर्व सातवीं तुरही के समय के दौरान समाप्त होता है, क्योंकि अगली चीज सातवीं मोहर का आना है, क्योंकि अगला मसीह के आगमन का रहस्य है। और इसके अलावा यहूदियों के लिए तुरही बजती है, उनकी छठी तुरही आवाज करती है, और जब यह होता है तो यह उनके लिए परमेश्वर के प्रकट पुत्र को ज्ञात करवाता है। एक आधी घड़ी के अंतराल पर, याद रखें, सारी तुरहियां इस छठी मोहर पर बजती है। छठी मोहर रहस्य को समाप्त करती है। छठी मोहर के नीचे सातवीं के खुलने से ठीक पहले, ध्यान दें, यहां ले व्यवस्था 23:26 है। वचन किस तरह से क्रम में है, पेंटिकॉस्ट के लंबे समय काल के बाद, जिसे इसराइल ने वहां पहले अस्वीकार कर दिया था, और उसने अन्य जाति कलीसिया को बाहर बुलाया इस पेंटिकॉस्टल पर्व के जरिए से। कितने लोग समझते हैं कि पेंटिकॉस्टल पर्व क्या है? यह वो फल है, कटनी का पहला फल, पुनरुत्थान का पहला फल, पेंटिकॉस्टल पर्व। लोगों, इससे मत चूकना, और जो आप टेप पर हैं, ध्यान से सुनना, यह पेंटिकॉस्टल पर्व का समय रहा है। यहूदियों ने चुप्पी साध ली है, उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया। अब उन्हें प्रायश्चितता के लिए वापस बुलाया जाना होगा। हम जानते हैं कि प्रायश्चितता कौन था, उन्होंने नहीं जाना। और पेंटिकॉस्टल जुबली के बाद तुरही बजी, यहूदियों को एक साथ बुलाती है। क्या आप नहीं देख सकते कि किस तरह से वो तुरही जो उस सतावट की है, हिटलर और उन लोगों के नीचे फूकी गई, और यहूदियों को एक साथ आने के लिए दबाव डाला गया था ताकि वचनों को पूरा करे। अब क्या आपने इसे समझा? वे सब जिन्होंने समझ लिया कहें आमीन। अच्छा, तो ठीक है, यहाँ ले व्यवस्था में ध्यान दें। अब 26 वचनों का जो क्रम है, पेंटिकॉस्ट के लंबे समय की अवधि के बाद, जो दुल्हन के बाहर बुलाए जाने में समाप्त होता है। दुल्हन को एक दास के द्वारा बाहर बुलाया गया है, वो अस्वीकार किया गया। अगला इसराइल के लिए ज्ञात होना है, जो प्रायश्चितता का पर्व है। ध्यान दें, यहाँ ले व्यवस्था के 16वें अध्याय में उसी तरह से ही है। अब जब उसने पेंटिकॉस्ट के पर्व को क्रम में रखा, मतलब प्रायश्चितता के पर्व को क्रम में रखा, लेकिन इस स्थान पर वे बुलाए गए हैं। ओह, कितना सिद्ध है! इसे समझना प्रचारकों, समझे, इसे चूकना मत सेवकों। पेंटिकॉस्ट के इस पर्व में, जिसका प्रतिनिधित्व लेव व्यवस्था 23:26 या 23 और 24 में किया गया है, शोक का पर्व है, न कि घात करना, एक पर्व का पर्व को घात, मेरा मतलब प्रायश्चितता को घात किया गया था, प्रायश्चितता को घात किया गया था। लेव व्यवस्था 16 यह बिल्कुल इसके अनुकूल है। केवल इसी स्थान में यह इसराइल को उनके पापों के लिए शोक करने को बुलाता है। यह आज कितना सिद्ध है, यह इसका फिर से घात करना नहीं है, जो कि मूसा ने दूसरी बार चट्टान को मारकर दर्शाया, इसने काम नहीं किया, न ही उस एक पर्व पर घात करना है, लेकिन प्रायश्चितता को अस्वीकार करने का एक शोक करना है। ओ प्रभु, यह तुरही होगी, उस पर्व पर अस्वीकृत होना है, तब उनके मसीहा को जाना जाता है। ध्यान दें, वे अपने मसीहा को जान जाएंगे जब वे उसे देखेंगे। वह इस बार सामर्थ में आ रहा है, वह एक जिसके लिए उन्होंने प्रतीक्षा की थी, वो सामर्थ में आ रहा है अन्य जातियों की दुल्हन के लिए, और यहूदी उसे पहचानने जा रहे हैं। और तब बाइबल कहता है, हमने अभी यहाँ पर प्रचार में से होकर बताया है, लगभग 6 महीने पहले या उससे अधिक समय हो गया। बाइबल कहता है, जब वे कहते हैं तुम्हें वे घाव कहाँ से मिले, कितने लोग को संदेश याद है, अपना हाथ उठाएं, निश्चय ही आपको समझे, तुम्हें वे घाव कहाँ से मिले थे। उसने कहा, मेरे मित्रों के घर में। मुझे उस समय का प्रचार याद है जब याकूब ने इसराइल की संतान को वहाँ उन चीजों को और भोजन और सामान लाने के लिए भेजा था, और किस तरह से यूसुफ ने अभिनय किया जैसे कि वो उन्हें जानता ही नहीं, और किस तरह से वे सब बातें हुई, तब उसने खुद को उन्हें ज्ञात करवाया, आपको याद है। और वे बहुत डर गए, वे रोने लगे, उसी तरह से जैसे याकूब की परेशानी थी। और यहाँ हम यहूदियों को सतावट के नीचे पाते हैं, नहीं जानता कि वे अब कहाँ पर खड़े हैं, लेकिन वे वापस आ रहे हैं। और जब वे प्राचीनता सामने दिखाई देते हुए देखते हैं, तो बाइबल ने कहा, जब उन्होंने इसे देखा, उन्होंने कहा, वे एक घर को दूसरे घर से अलग कर देंगे और बहुत दिनों तक रोएंगे, जैसे कि एक परिवार जिसने उनके इकलौते पुत्र को खो दिया हो। तुम्हें वे घाव कहाँ से मिले, उसने कहा, मेरे मित्रों के घर में। देखा, याद रखें, दुल्हन पहले से ही स्वर्ग में है, यूसुफ की पत्नी महल में थी, और यूसुफ ने उसके आसपास खड़े हर एक को बाहर कर दिया, और उसने अपने भाइयों को अपने बारे में ज्ञात करवाया। आप देखें, उसकी पत्नी और बच्चे वे सारे महल में थे जब वो वापस आकर अपने आप को यहूदियों को अपने बारे में ज्ञात करवाता है। वहाँ वो प्राचीनता है, वहाँ आपकी तुरही की आवाज है, वहाँ है जहाँ वे कहते हैं, ओह यह क्या है, यह प्राचीनता है, वे घाव कहाँ से आए हैं, वहाँ है यह, मेरे मित्रों के घर में। याद रखें कि यूसुफ के भाइयों ने क्या कहा, क्योंकि उन्होंने कहा, अब हम मारे जाएंगे, निश्चय ही यकीनन हमने ऐसा किया, हमने इस तरह से बुरा काम किया। उसने कहा, नहीं, परमेश्वर ने जीवन को बचाने के लिए ऐसा किया है। क्या आपको उत्पत्ति में की कहानी याद है, देखा समझे, वैसे ही उसने इस तरह से किया ताकि अन्य जातियों के जीवन को बचाया जा सके जो दुल्हन है। कहा, ये मुझे अपने मित्रों के घर में मिले, लेकिन क्रोधित मत होना, देखो अपने आप से डरो मत। उन्होंने कहा, ओ प्रभु, क्या हम वास्तव में उसे देखने से चूक गए, क्या वह प्राचीनता थी और हम इससे चूक गए हैं, हे परमेश्वर। और उन्होंने कहा, वे बस अपने आप को अलग करके और बहुत दिनों तक शोक करते हैं, यह क्या है, प्राचीनता, वे दुखित हैं। इस बार आने वाले का ज्ञात होना है, प्राचीनता यह नियमित रूप से घात होने वाली प्राचीनता नहीं है जैसे लेव व्यवस्था 16 में है, लेकिन लेव व्यवस्था 23 उनके पापों के लिए एक शोक का समय है, और उनका जो पाप था उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया। ओह, क्या आप नहीं देखते कि हम कहाँ पर हैं? क्या आप यह नहीं देखते हैं कि उन तुरहियों का मतलब क्यों हमारे लिए कुछ नहीं है, वे सारी हमारी छठी मोहर के नीचे बजी। अब आप देख रहे हैं कि पवित्र आत्मा क्यों मुझे बोलने नहीं देता, और स्वर्गीय पिता जानता है मेरे सामने इस बाइबल के साथ हूँ, यही वो सच्चाई है। इसे कल तक नहीं जानता था, परसों के दिन तक मेरे कमरे में जहाँ उसने इसे प्रकट किया, मेरे पास आकर और मुझसे बात की। मैंने वापस आकर मैंने कहा, पत्नी, मैंने इसे अब जान लिया, उसने मुझसे अभी वहाँ मुलाकात की और मुझे बताया, यहाँ है ये प्रिय, देखा, देखे यह वहाँ है, देखो सिद्ध रूप से समानता में है। ओ वे लोग जो बिना उसके हैं, जल्दी से आ जाएं, हो सकता है यह अंतिम मौका हो जो आपको किसी भी समय मिल सकता है। आप नहीं जानते कि वो किस समय आ सकता है, तुरहियों का पर्व। बाइबल कहती है वे अपने आप को एक दूसरे से अलग करेंगे और प्रार्थना करेंगे और रोएंगे, क्योंकि जैसे कि कोई व्यक्ति जिसने अपने इकलौते को खो दिया हो। देखो, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, अब ध्यान से सुने, इस बात से मत चूकना, कितना अद्भुत। सातवें दूत से सातवीं मोहर का संदेश वाहक प्रकाशित वाक्य 10 में का संदेश सातवीं मोहर था, सात तुरहियों के लिए, उन दो समयों के बीच। हे परमेश्वर, हम यह कैसे कह सकते हैं जिससे कि लोग इसे देखें? यह उस छठी तुरही के बीच है, और छठी तुरही और छठी मोहर के बीच एक ही समय में आवाज को देते हैं, और छठी तुरही और सातवीं तुरही के बीच वहाँ अन्य जातियों के सामने एक भविष्यवक्ता आ जाएगा ताकि लोगों को मूल पेंटिकॉस्टल सिद्धांत के लिए वापस बुलाए। और प्रकाशित वाक्य 11 में दो गवाह यहूदियों के लिए प्रकट होते हैं जो उन्हें यीशु की ओर भेजते हैं, जबकि कलीसिया को ऊपर उठा लिया जाता है। उन सभी को वे भविष्यवक्ता आमीन। प्रभु के वचन को तोड़ा नहीं जा सकता है, यह एक संप्रदाय नहीं होगा। क्या आप इसे देखते हैं? यहाँ अपनी किताब में पढ़ें और देखें कि क्या छठवीं और सातवीं तुरही के बीच में कुछ अंदर डाला नहीं है। छठे और सातवें महामारी के बीच उन यहूदियों को बुलाया जाए। हम वहाँ पर उस 144,000 पर आए हैं, आपको यह याद है, जो उसके बीच में था। क्या आपको याद है छठवीं के बीच पांचवीं मोहर और छठी मोहर और सातवीं मोहर के बीच वहाँ 144,000 को बाहर बुलाया जाना था। क्या आपको याद है? अब यही है वो जहाँ ये तुरहियाँ ठीक वहीं पर आती है। देखो, और सतावट और घोड़े वहाँ पर छोड़े गए। फिर उसके बीच में तब एक सातवें दूत का संदेश होना था जो प्रचार करते आ रहा था और पेंटिकॉस्टल्स को दोषी ठहरा रहा था, और यीशु को बाहर रखा गया था। किसी के साथ कोई सहयोग नहीं होगा, उसे बाहर रखा जाएगा, अस्वीकार किया गया। बाइबल ऐसा कहता है, क्योंकि यह मसीह हमारे बीच प्रकट हुआ है। यीशु हम सबके बीच है, उसके वचन की शुद्धता में प्रकट हुआ, इसे ज्ञात करवाते हुए। और यदि वह यह बस कल्पना करना नहीं है मित्रों, यह यहोवा यो कहता वाला वचन है। और उसी समय पर अब जैसे ही ये कलीसिया दुल्हन को एक साथ लाया जाता है, उसे ऊपर उठा लिया जाता है, और वो सातवीं मोहर का रहस्य या सातवीं मोहर जो कि जाने का रहस्य है, और यहूदियों को सातवीं तुरही के रहस्य के द्वारा बुलाया जाता है, जो दो भविष्यवक्ता है एलिया और मूसा, और वे वापस आते हैं। और यही है जहाँ पेंटिकॉस्टल वे सारे मिश्रित होते हैं, वे कुछ तो घटित होने के लिए देख रहे हैं। कलीसिया जा चुकी है और यही यहूदियों के लिए है। अब मैं महसूस करता हूँ किसी के मन में वो कह रहा है यह मूसा नहीं हो सकता। जी हाँ, ऐसा है। अब आप याद रखना, वो मुझे आपके विचारों को बता सकता है। मैं इसे अब भी महसूस कर रहा हूँ, तो ठीक है, मुझे इसे आपके लिए सीधा सीधा बताने दो। यह मूसा था, क्योंकि यहाँ पर आपके पास यह विचार है। आप कहते हैं मूसा, यह मूसा नहीं हो सकता है क्योंकि मूसा की मृत्यु हो गई है। आप सोचते हैं कि यह एलिया है, यह एलिया है, सच है। जब आप सोचते हैं यह हनोक है, आप कहते हैं मूसा पहले ही मर चुका है। लेकिन याद रखें, वह फिर से जीवन में आ सकता है। वो आया 800 वर्ष के बाद, कई सौ वर्ष के बाद वह रूपांतर के पर्वत पर दिखाई दिया। आप कहते हैं एक मनुष्य के मर जाने के बाद? जी हाँ श्रीमान, लाजरस मर गया था, फिर से जी उठा, और उसे फिर से मरना पड़ा था, समझे? निश्चय ही। और यहाँ तक कि दुष्ट लोगों को फिर से जीवन के लिए जिलाया जाएगा और बाद में दूसरी मौत मरना होगा। क्या ये सही है? तो इसे अपने मन से बाहर निकाल दे, ये मूसा है। आपकी सेवकाई को देखें, बिल्कुल वैसे ही है जो मूसा और एलिया ने किया। आकाश को बंद किया और इस पर आग को बरसाया। आप जानते हैं कि उन्होंने क्या काम किया है। इस पर सोचें, यह अंत समय है मित्रों। हालेलुया, प्रभु का महान दिन नजदीक है। अपने आप को एक साथ इकट्ठा करें। मसीहा का पर्व, वे उसे अस्वीकार कर देंगे और वे जान जाएंगे कि वहाँ उनका मसीहा है। बाइबल ने कहा वे इस तरह की अद्भुत बातें जगह लेंगी। प्रकाशित वाक्य 11 में बताता है उनकी सेवकाई मूसा और एलिया की होगी, जो इज़राइल को यहूदी रीति रिवाजों से बाहर बुलाएगी, बस वैसे ही जैसे सातवें दूत के संदेश ने दुल्हन को पेंटिकॉस्टल रीति रिवाजों से बाहर बुलाया। याद रखें, मूसा और एलिया इज़राइल को उस पुराने समय की प्राचीनता से बाहर बुलाना है, जो मेमने और भेड़, लहू और बकरियां और वास्तविक जीवित बलिदान है, वचन की ओर लाना है। और सातवें दूत का संदेश उसी तुरही के नीचे हर एक बिल्कुल वैसा ही, वही मोहर उसके लिए है। क्या? लोगों को बुलाने के लिए, जो दुल्हन है पेंटिकॉस्टल और संसार के रीति रिवाजों से बाहर बुलाने के लिए उस सच्चे प्राचीनता की ओर। वो वचन मसीह यहाँ अपने वचन में भेष बदल कर हमारे बीच में देहधारी हुआ। विज्ञान ने इसे तस्वीरों के द्वारा साबित किया है। कलीसिया संसार भर में यह जानती है। हम इसे दृढ़ता से जानते हैं, क्योंकि उसने हमें कभी भी यहोवा यो कहता है मैं कभी एक बात भी ऐसा नहीं बताई सिवाय जो सच्चाई रही है। क्या उसने नहीं कहा वहाँ नीचे नदी पर जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को भेजा गया था, उसी तरह इस संदेशवाहक को रखा जाएगा? मैंने देखा और उसमें 12 बजे हैं, आधी रात की घड़ी यहाँ पर है मित्रों। हम पर देखो कि किस तरह से वचन सिद्ध है पूरी तरह से, या किस तरह, यह देखो यह कोई संगठन नहीं होंगे जो वहां जाकर और यहूदियों को बुलाएंगे, यह तो वो पुरुष होंगे मूसा और एलिया, वे दोनों ही भविष्यवक्ता होंगे। अब देखो अन्य जातियों को उस दुल्हन को बाहर बुलाने के लिए उसने मलाकी 4 में उसी काम को करने की प्रतिज्ञा की है, और बाइबल ने कहा कि उसे कलीसिया से बाहर कर दिया जाएगा, उस 7वें कलीसिया के युग में उसे कलीसिया से बाहर कर दिया जाएगा, यह पूरी तरह से काला हो जाएगा। और यह कहां पर अंधकार में होता है? जब यह इस कलीसिया के सांप्रदायिक सिद्धांत के अंदर चला जाता है, कलीसिया के सांप्रदायिक परिषद में, विश्व परिषद कलीसिया में चला जाता है, उसे पूरी तरह से बाहर रखा गया है, उसका वचन वे इससे सहमत नहीं हो सकते हैं। आप जानते हैं कि वे नहीं हो सकते, वे यहाँ तक अपने छोटे से स्थानीय झुंडों में भी सहमत नहीं हो सकते हैं, तो वे किस तरह से इसमें सहमत होंगे? इसलिए वे एक और पशु की छाप को लेते हैं जो पशु के निमित्त एक छाप है। याद रखें, बाइबल ने कहा वहाँ पशु के निमित्त एक छाप बनाई गई थी, और यह संयुक्त राज हमेशा ही 13 संख्या रहा है। यह 13 राज्यों से आरंभ हुआ, 13 उपनगर, 13 तारे, 13 धारियां, संख्या 13, और हमेशा ही एक स्त्री है। यह प्रकाशित वाक्य के 13 अध्याय में दिखाई देता है, और पहले एक मेमना है, नम्रता, बोलने की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और इत्यादि, और फिर वे सामर्थ को पाते हैं और उस सारी सामर्थ के साथ बोलते हैं जो उसके सामने अजगर के पास थी। यह क्या है? अजगर क्या था? रोम। देखो, ये एक छाप थी, एक पशु की प्रतिमा, ताकि परमेश्वर की सच्ची कलीसिया के विरोध में उठे। उनके संप्रदायों के नीचे ये चीजें पीड़ा को देंगी, लेकिन जब वे ऐसा करना आरंभ करते हैं, मेमना अपनी दुल्हन को हमेशा के लिए अपनी तरफ ले लेगा, स्वर्ग की सारी सेना इकट्ठा होगी। ओह, यह एक शानदार दृश्य होगा, सारे संत सफेद बेदाग में होंगे, और यीशु के साथ वे अनंतता के लिए भोज करेंगे। आमीन। आओ और भोज करो, गुरु बुलाता है, आओ और भोज करो। आमीन। क्या ही दिन है जिसमें हम रह रहे हैं, वो घड़ी। दौड़ो लोगों, अपने जीवन के लिए दौड़ो। ध्यान देना, अब समाप्ति में 7वें दूत के जैसी सेवकाई, 2 गवाह 7वीं तुरी के नीचे ठीक पहले, या 6ठी तुरी 7वीं तुरी से ठीक पहले। अब याद रखना, और मैंने आपको बताया था कि मैं इसे वापस लाऊंगा, बड़े शब्द की तुरही। उसने कहा वह यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ यशाया में उसने कहा बड़े शब्द की तुरही होगी, बड़े शब्द की तुरही, न ही तुरहियाँ, अब तुरहियों का पर्व। उसमें से 2 हैं, मूसा और एलिया, तुरही को बताने के लिए। लेकिन उस बड़े शब्द की तुरही के नीचे प्रभु का आगमन है, जो यूसुफ के लौटने की घोषणा करने के लिए है। देखो, जो सारे राष्ट्र यरूशलेम में इकट्ठा होंगे। आमीन। आप इसे यशाया की पुस्तक में देखते हैं, मैंने अभी कुछ समय पहले आपको इसे बताया है, उन अध्याय में से एक जिसे हम पढ़ते हैं, यह यशाया 18:1-3 में है, और यशाया 27:12-13 में है, यही है जहां वह उस तुरही को फूंकता है, और सारे राष्ट्र इसराइल को उसकी मातृभूमि में पहचान लेंगे, परमेश्वर उसके साथ है। तब दुल्हन दूल्हे के साथ होने के लिए आ जाएगी, और दूल्हा दुल्हन के साथ, और उसके बाद महान सहशताब्दी होगी परमाणु शक्ति के द्वारा सारे संसार के नष्ट होने के बाद, और वहाँ एक नया आकाश और नई धरती होगी, हमेशा के लिए जीवित रहेंगे। देखो ठीक नीचे, अब ध्यान दें, मूसा और एलिया की सेवकाई। अब हर किसी ने इसे समझा? मुझे फिर से कहने दें, मूसा और एलिया की सेवकाई जो 6ठी और 7वीं तुरही के बीच है, जो 2 भविष्यवक्ता होंगे, जो वे इसराइल हमेशा ही अपने भविष्यवक्ताओं पर विश्वास करते हैं। अब पवित्र आत्मा ने मुझे क्यों कहा, जब मैंने वहां जाना आरंभ किया, यह दिखाने के लिए कि वो परमेश्वर का पुत्र था, कहा अभी नहीं। आपको यह याद है कि लगभग 5 वर्ष पहले मैं भारत जाने की मार पर था, कहा इसे मत करना, मैंने कहा, उन्होंने कहा यदि यह मसीहा है तो हमें उसके भविष्यवक्ता के चिन्ह को करते हुए दिखाने दो, हम भविष्यवक्ताओं पर विश्वास करते हैं। भाई लेवी पेत्रस और उन्होंने मेरे लिए उन बाइबलों को भेजा, जबकि उन्होंने उनमें से लाखों यहूदियों को देते हैं जो ईरान से और हर जगह से आ रहे हैं, वे वापस आ रहे हैं, खुद को एक साथ इकट्ठा कर रहे हैं, एक राष्ट्र बन रहे हैं। मैंने सोचा यह मेरा समय है, मैं पहले से ही काहिरो मिस्र। उसने कहा इसे अभी मत करना, वो घड़ी अभी तक नहीं आई है। तब मैं घर लौट आया। ओह प्रभु, मूसा और एलिया को पुकार को करना है। पेंटिकॉस्टल की जुबली अभी भी जारी है या इस समय तक थी? देखा, अब तुरहियों के पर्व को जानना होगा। और यहाँ पर यह एक मलाकीचार जो वहाँ पर इससे जुड़ा हुआ नहीं है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ध्यान दें, यहाँ पर देखें, यह सेवकाई मूसा और एलिया की होगी जो बदलती है और यहूदी रीति रिवाजों से इसराइल को बुलाती है। सुनना, यहूदी रीति रिवाजों से जिससे वे मिश्रित हो गए थे, उनके भविष्यता होने के कारण वे उस पर विश्वास करेंगे। उन्हें प्राचीनता के पर्व के लिए बुलाते हैं जो मसीह है, उन्हें मसीह की पहचान को दिलाते हुए वे कहेंगे वो आ रहा है, वो यहाँ पर होगा। यहूदी इकट्ठा हो जाएंगे, ये बातें इस तरह से होंगी। और फिर जब वो आता है, कहता है मैं यहाँ पर हूँ। देखा, तुम्हें वे दाग कहाँ से मिले? मेरे मित्रों के घर में। अब उसी तरह जैसा कि उन दो भविष्यवक्ताओं ने किया था, याद रखें, अन्य जाति दुल्हन के पास एक भविष्यवक्ता को होना है जिसे एलिया एलिया कहा जाता है, जिसे उन्हें उनके रीति रिवाजों से बाहर बुलाना है, दुल्हन को, बस उसी तरह जैसे कि इन भविष्यवक्ताओं को यहूदियों को यहूदीवाद से बाहर बुलाना है मसीह के लिए, जो प्राश्चित्ता है। और अन्य जाति पहले से ही प्राश्चित्ता को जानते हैं, लेकिन यह दुल्हन को मूल प्राश्चित्ता के लिए वापस बुलाना है, जहाँ ये सबत 50, ये सारे 7 सबत जिससे वे दूर हो गए हैं, उन्हें अंत समय पर वापस बुलाता है। 7, सुनना, 7वीं कलीसिया का संदेश वाहक, 7 तुरही का संदेश वाहक, सारे भविष्यवक्ता है। अब यह सही है, 144,000 इसके अंदर डाले गए हैं। बताते हैं मोहरे जो अन्य जातियों के लिए थी, इसे अन्य जातियों के लिए होना था, इसे अन्य जातियों पर खोलने के लिए अन्य जाति कलीसिया को देखना था। यही सब हम जानते हैं, यही सब हम सुनेंगे जो पहले ही बीत चुका है, हम यीशु के लिए देख रहे हैं। आप कहते हैं अब एक मिनट रुकना भाई ब्रैनम, मेरा विश्वास है वे इसे करने जा रहे हैं। अंतिम चिन्ह जो अब्राहम और हम अब्राहम के शाही बीज हैं, दुल्हन, वो अंतिम चिन्ह जो अब्राहम ने कभी देखा था, इससे पहले प्रतिज्ञा किया हुआ चिन्ह आए, प्रतिज्ञा किया हुआ पुत्र आए, वो क्या था? परमेश्वर एक मनुष्य जाति के रूप में जो लोगों के विचारों को जांच सकता है। एक मनुष्य, न ही एक दर्जन, एक मनुष्य, कोई फर्क नहीं पड़ता कितने भी नकल करने वाले क्यों न हो, उनके पास एक था और उसने विचार को व्यक्त किया जो वहाँ थे। क्या? और अगली बात जो घटित हुई कि अब्राहम और सारा एक नौजवान पुरुष और स्त्री में बदल गए, हम यह जानते हैं। अब मैं जानता हूँ कि एक तरह से अब आपको थोड़ा गले में अटकेगा, लेकिन याद रखें, बस इतना कि आप निश्चित रूप से जान जाएंगे। आप इस तरह से बाइबल नहीं पढ़ते हैं, आप लिखी हुई लाइन रेखा के बीच में पढ़ें और देखें, वो चित्र सामने आ जाएगा। देखो, सारा एक बूढ़ी स्त्री थी, बाइबल ने कहा, वे उसका गर्भ मर चुका था। क्या यह सही है? अब्राहम का उसके बीज में का जीवन मर गया था, क्या यह सही है? अब याद रखना, अब्राहम का बीज मर चुका था। 40 वर्ष के बाद एक दूसरी स्त्री से उसके 7 पुत्र हुए। उसने क्या किया? उसने उनके शरीर को बदल दिया। देखो, उन्होंने 300 मील की यात्रा तय की वहाँ गरार की ओर। ये एक बूढ़े व्यक्ति के लिए काफी लंबी यात्रा है, कहा। और यहाँ तक सारा ने सोचा कि वे पारिवारिक संबंध भी नहीं बना सकते हैं। उसने कहा, मुझे 20 वर्ष या उससे भी अधिक हो सकता है इससे पहले जो उनका पारिवारिक संबंध हुआ करता था। कहा, मुझे एक बूढ़ी स्त्री को और मेरा स्वामी भी बूढ़ा है, क्या फिर से सुख प्राप्त होगा नौजवान लोगों की तरह? उसने कहा, क्या परमेश्वर के लिए कुछ भी कठिन है? ध्यान दें, क्या हुआ? तुरंत ही वो एक प्यारी सी नौजवान स्त्री में बदल गई। ये दिखा रहा है वहाँ पर, ये वर्णन कर रहा है कि वो अब्राहम के शाही बीज के लिए क्या करने जा रहा है, उस पुत्र को प्राप्त करने के लिए जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी। वो एक युवा अवस्था में वापस बदल गई। देखो, वे गरार के अंदर चले गए और क्या हुआ? अभिमेलेक उस राजा को उससे प्रेम हो गया। उसने कहा, वह खूबसूरत और सुंदर है और उससे विवाह करने वाला था, क्या ये सही है? बूढ़ी दादी और वहाँ वे सारी सुंदर लड़कियाँ हैं। दादी, वो सुंदर है, वह दिखने में खूबसूरत है। देखा, परमेश्वर ने उसके शरीर को बदल दिया और उन्हें वापस उसी अवस्था में लाया। यह एक रहस्य है जो अब इस दिन में प्रकट होना है मनुष्य के पुत्र के द्वारा। देखो, संध्या का संदेश, समझे, उसी अवस्था में वापस लाया। और यह वो आखिरी चिन्ह था जो उन्होंने देखा था, जो था क्या? उस विचारों को परखना इससे पहले कि शरीर का बदलना हो और इससे पहले कि हम कभी पुत्र को प्राप्त कर सकें, क्या होता है? परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, मसीह में मरे हुए पहले जी उठेंगे एक नया शरीर, और हम जो जीवित हैं और बचे हुए हैं क्षण भर में पलक झपकते ही बदल जाएंगे, हालेलुया, और एक साथ उठा लिए जाएंगे ताकि हम हवा में प्रभु से मिले। रहस्य को जाना जा चुका है, मोहरे खुली है। तुरही इसराइल के लिए आवाज को देती है, दो भविष्यवक्ता प्रकट होने के लिए तैयार हैं। यह क्या है? अब कलीसिया को दृश्य से बाहर जाना ही है तो वे प्रकट हो सकते हैं। वो एक ही समय में दो के साथ व्यवहार नहीं कर सकता, उसने कभी नहीं किया। देखा, ओ भाई, देखो, वास्तव में सबको बुलाने के लिए उन्हें संप्रदायों और रीति रिवाजों से बाहर बुलाते हैं। अब हम देखते हैं पेंटिकॉस्ट के कलीसिया का युग समाप्त हो गया है। दुल्हन को वहाँ से हटना अवश्य है अब ऊपर जाने के लिए, इसलिए कि वे दो सेवक, परमेश्वर के दो दास, प्रकाशित वाक्य में दो भविष्यवक्ता, जिससे वे दृश्य पर प्रकट हो सकते हैं, ताकि उनके लिए सातवीं तुरही की आवाज को दे, उन्हें मसीह के बारे में बताएं। सातवा दूत संदेशवाहक कहता है, देखो वो परमेश्वर का मेमना जो संसार के पापों को दूर ले जाता है, न ही देखो वो मेरे मेथोडिस्ट, मेरे बैप्टिस्ट, मेरे पेंटिकॉस्टल, लेकिन वो वचन परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर का मेमना जो संसार के पापों को दूर ले जाता है, क्योंकि वहाँ कोई दूसरी बुनियादें नहीं है। आपने देखा हमारे पास और कितना समय है? यहूदी उनकी मातृभूमि में है, दुल्हन को बुलाया गया है। वचन के अनुसार हर एक चीज ठीक उसी तरह से है जो उसने प्रतिज्ञा की थी। हम तैयार हैं, वो घड़ी यहाँ पर है। राष्ट्र टूट रहे हैं, इसराइल जाग रहा है, वे चिन्ह जो बाइबल ने पहले से बताए, अन्य जातियों के दिन गिने हुए हैं, सतावट से घिरे हुए, वापस आओ हे बिखरे हुए अपने स्वयं के लिए, छुटकारे का दिन निकट है, डर के मारे मनुष्य के दिल के दौरे पड़ रहे हैं, परमेश्वर की आत्मा से भर जाओ, अपने दिए को ठीक कर लो और साफ कर लो, ऊपर देखो तुम्हारा छुटकारा निकट है। झूठे भविष्यवक्ता झूठ बोल रहे हैं, परमेश्वर के सत्य को वे इंकार कर रहे हैं। वो यीशु जो मसीह है हमारा परमेश्वर है, ये सही है, लेकिन हम चलेंगे जहाँ प्रेरितों ने कदम रखा है, क्योंकि छुटकारे का दिन निकट है, डर के मारे मनुष्य के दिल के दौरे पड़ रहे हैं। आत्मा से भर जाओ, अपने दिए को ठीक कर लो और साफ कर लो, कोई मौका मत देना, ऊपर देखो तुम्हारा छुटकारा निकट है। भविष्यवक्ता ने कहा संध्या के समय ये उजियाला होगा, ये संध्या के समय में उजियाला होगा, महिमा का मार्ग आपको अवश्य ही मिलेगा, जल के मार्ग में आज उजियाला है, यीशु के बहुमूल्य नाम में दफनाया गया। जवान और बूढ़े अपने सारे पापों के लिए पश्चाताप करें, पवित्र आत्मा निश्चय ही प्रवेश करेगा। संध्या के उजाले आ गए हैं, यह तो एक सत्य है कि परमेश्वर और मसीह एक हैं। हम यहाँ हैं, हम अंत में हैं। यह बस एक मनुष्य की कुछ नासमझी की बात नहीं है, यह तो यहोवा जो कहता है वो है। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं। दया से भरे परमेश्वर यहोवा सर्वशक्तिमान, जिसने सीनै पर्वत पर गर्जना की और लोग चिल्ला उठे, मूसा बोले और ना ही परमेश्वर, ऐसा न हो कि हम मर जाएं। आपने कहा महान यहोवा, मैं उनके लिए एक भविष्यवक्ता को खड़ा करूंगा, मैं उनसे इस तरह से बात नहीं करूंगा, लेकिन आपने प्रतिज्ञा की जिसे आप करेंगे, और आपने इसे किया, आपने हमारे लिए खड़ा किया प्रभु यीशु, वो वचन है, आपने बताया कि वो वचन था, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था और वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच डेरा किया। हम उन चीजों को देखते हैं जो उसने यहाँ हमारे लिए भविष्यवाणी की उसके भविष्यवक्ता योना के जरिए से उस पतमुस के टापू पर। हम इसका हर एक शब्द पूरा होते हुए देखते हैं। हम पवित्र आत्मा को यहाँ हमारे बीच धरती पर प्रकटीकरण में आते हुए देखते हैं। हम उन संप्रदायों को उसे बाहर निकालते हुए देखते हैं, उस वचन को। उसके पास लोगों के विरोध में कुछ नहीं है, यही वो वचन है जिससे वे घृणा करते हैं, ये उनके रीति रिवाजों के विरोध में है। बस उसी तरह जब आप यहाँ धरती पर थे तब आप वचन थे और आप उनके रीति रिवाजों के विरोध में थे, और उन्होंने आपको उनकी कलीसियाओं से और हर जगह से निकाल दिया, और अब प्रभु कहीं भी कोई सहयोग नहीं है। यहाँ तक दक्षिण अफ्रीका में जाने का प्रयास कर रहा हूँ, जहाँ मैं जानता हूँ कि वहाँ पर अब भी कुछ प्राण प्रतीक्षा कर रहे हैं हर जगह, और ऐसा दिखाई देता है जैसे वे मुझे ग्रहण नहीं करेंगे प्रभु। न ही यह मेरी वजह से है प्रभु, यह तो इस संदेश की वजह से है, लेकिन आपने कहा कि यह इसी तरह से होगा, और आपने इसे हमें बताया है ताकि हम निराश न हो। हम उस घड़ी को जानते हैं जिसमें हम रह रहे हैं। परमेश्वर, ये लोग जो आज सुबह यहाँ इस गर्म पकने वाले कमरे में बैठे हुए हैं, उन्होंने ध्यान से सुना है, वे अब देखते हैं, मुझे पक्का है। यदि वे नहीं देख रहे हैं तो इसे उनके लिए प्रकट करें, प्रभु क्यों आपने मुझे उन तुरहियों को लेने की अनुमति नहीं दी। मैं देखता हूँ कि इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। ठीक उस छठी तुरही पर यह सब हुआ, और हमने छठी मोर को खुला हुआ देख लिया है, और हमने यहाँ एक दर्शन को देखा है 2 सप्ताह पहले, जो दुल्हन का और कलीसिया का पूर्वालोकन था, जैसे मैंने इसे यहाँ बताया है, बिल्कुल जैसा कि आपने मुझे दिखाया प्रभु, मैंने इसे बताया है। हम यहाँ हैं, यह हमारे सोचने से भी ज्यादा देरी हो सकती है। हे पिता, यदि आज सुबह यहाँ कोई व्यक्ति है जिसने बस कुछ अंधविश्वास को लिया है, कुछ धर्म विज्ञान के प्रभाव को, या कुछ धर्म ज्ञानी के शब्द को जो परमेश्वर के वचन के विपरीत है, और वे उस वास्तविक मसीह, वास्तविक पवित्र आत्मा को नहीं जानते हैं, ये अब भी उनके लिए प्रकट नहीं हुआ है वो वचन कि इस दिन में वचन किस तरह से होना है। वे केवल एक रीति रिवाज को देखते हैं। वे एक ऐसे प्रकाश में जी रहे हैं जो अंधा कर रहा है, दुनिया की उस अब तक की सबसे बड़ी डकैती की तरह जो इंग्लैंड में हुई थी, इसे एक झूठे प्रकाश के द्वारा किया गया था। और सबसे बड़ी डकैती जो आपके कलीसिया में उस समय हुई थी, जब उन्होंने एक संप्रदाय के प्रकाश को लिया और बाइबल उस मसीह के सच्चे प्रकाश को इनकार कर दिया। हे परमेश्वर, दया करें, खोए हुए को बचाएं। प्रभु कृपया, मैं बस कुछ और समय के लिए मांगता हूँ यीशु, हमारे प्रेमी जन है, बस कुछ और समय के लिए। बहुत जल्द ही उस पार से बड़ी चट्टान को काटा छाटा जाएगा। प्रदान करें प्रभु, यदि कोई आज की सुबह आपके बिना है, होने पाए वे ठीक अभी आ जाएं मधुरता से और आपको ग्रहण करें, जबकि हमारे सिर झुके हुए हैं। यदि आप अपना हाथ उठाकर कहते हैं, मुझे याद करे भाई ब्रैनम, हमारे पास नहीं, वेदियां और इत्यादि भर चुकी हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे, बस कहें मुझे याद करें। परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको आशीष दे, बस पूरी तरह से सैकड़ों हाथ। पिता परमेश्वर, यहाँ कहीं तो छोटी सी परछाई है, इसे दूर करे प्रभु। वे यहाँ इस कमरे में स्थित है, नहीं हो सकता है शैतान ने उनकी आंखों को अंधा किया हो बीते समय में, लेकिन मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप उनकी पलकों को झपकाएंगे, जैसे आपने कई दिन पहले हमारे लिए किया था। लेकिन अब जब आप हम सभी को दृष्टि के लिए बुलाते हैं, बाइबल ने कहा कि वे अंधे थे, वे इसे नहीं जानते थे, कहा मैं तुम्हें मुझसे आग का सुरमा खरीदने की सम्मति देता हूँ। परमेश्वर, आज सुबह वे उनकी आँखों पर सुरमे का उपयोग करें, जिससे वे देख सकें। अब भी यह नम्र होगा, नम्र लोगों के झुंड में, और नम्र, अशिक्षित और इत्यादि, लेकिन आरंभ में तब भी ऐसा ही था। इसे प्रदान करें प्रभु कि वे इसे अभी ग्रहण करें। मैं उन्हें आपको देता हूँ, आपके पुत्र यीशु के नाम में मांगता हूँ। और आपने कहा वह जो मेरा वचन सुनता है, मुझे पक्का है प्रभु, मेरे सबसे अच्छी समझ से उन्होंने इसे सुना है और उस पर विश्वास करता है जिसने मुझे भेजा। ना ही दिखावटी विश्वास किया है, लेकिन वास्तव में विश्वास करते हैं, और वचन ने जो कहा है उसे विश्वास करते हैं। उसके पास सनातन का जीवन है, और वो न्याय में नहीं आएगा, लेकिन मृत्यु से जीवन के लिए प्रवेश कर चुका है। यूहन्ना 5:24। प्रदान करे प्रभु कि वे आज उस घड़ी से लेकर आपके हो जाएं। यदि उनके मन में कोई ऐसी सोच है तो उसे दूर करे। यदि हमारे बीच में कोई एक बीमार व्यक्ति है, तो वो महान पवित्र आत्मा प्रभु, जो मैं जानता हूँ कि वो यहाँ पर है और विचारों को प्रकट कर रहा है, यहाँ मंच पर खड़े हुए, वे इसके बारे में सब जानते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप उन्हें चंगा करेंगे प्रभु, सारे सवालों का समाधान करें। तालाब उन लोगों के लिए खुला रहेगा जिन्होंने कभी भी यीशु मसीह के नाम में डुबकी नहीं लगाई है, दूल्हे का नाम लेते हुए। उनके पास एक संप्रदाय है, कलीसिया संबंधित बातें हैं। किसी एक ने भी कभी भी इन शीर्षक पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा नहीं लिया था या छिड़काव किया गया था। और ये पारंपरिक चीजें जो इस युग के कलीसिया से संबंधित है, मसीह विरोधी आंदोलन है, पशु की छाप है, किसी ने भी कभी भी पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा नहीं लिया था कैथोलिक कलीसिया आने तक। सारा बाइबल और सारा इतिहास बाद में ये बताते हैं कि उनका यीशु के नाम का बपतिस्मा हुआ था। पौलुस ने कहा गलतियों 8:1 में, यदि स्वर्ग से कोई भी दूत आकर और किसी और सुसमाचार का प्रचार करता है तो उसे शापित होने दो। और आपने उन लोगों को आज्ञा दी जिन्होंने यूहन्ना के तहत बपतिस्मा ले चुके थे, वही जिसने यीशु को बपतिस्मा दिया था कि आकर यीशु मसीह के नाम में फिर से बपतिस्मा ले, प्रेरितों के काम 19 में। और कहा यहाँ तक कोई भी दूत तुम्हें कुछ भी और न बताने दो। अंतिम दिन में एक संदेश वाहक आएगा जो लोगों को पहले फल की ओर मार्गदर्शन करेगा, वापस उस मूल विश्वास की ओर। इसे प्रदान करे प्रभु कि वो महान संदेश वाहक अब हमारे बीच हो, वो महान मसीह पवित्र आत्मा जो उज्जवल बनाता है, समझ को खोलता है, वचन को खोलकर और इसे हम पर प्रकट करता है, होने पाए वो उसे वापस मूल की ओर मार्गदर्शन करे, पेंटिकॉस्टल विश्वास की ओर। जैसे पत्रस ने पेंटिकॉस के दिन कहा तुम में से हर एक जन पश्चाताप करे और पाप की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले। और यह उस तरह हमेशा के लिए था हर एक व्यक्ति के लिए जब तक कि निसिया पर रोमन कलीसिया नहीं आ गई। परमेश्वर अब दया करें, तालाब तैयार हो जाएगा, हृदय खुले हैं, अंदर आ जाए प्रभु यीशु, हम अंतिम घड़ी में हैं। यदि कोई उनके लिए संभावना है प्रभु इस समय में अंदर आने के लिए, जो कि मुझे आशा है और भरोसा है कि वहाँ पर है, और हम जो प्रभु में हैं, होने पाए अब हम विस्तृत सूची को ले कि हमने परमेश्वर की आवाज को देखा है और सुना है, उसके वचन के जरिए से बोल रहा था, और हम जानते हैं कि हम किस घड़ी में रह रहे हैं। इसे प्रदान करें पिता, हम उन्हें आपको सौंपते हैं आपके पुत्र के नाम में। अब हमारे झुके हुए सिरों के साथ धीरे से और कोमलता से यीशु बुला रहा है, आपको बुला रहा है।